ओम शांति। जो भी भाई बहने सोशल विंग के प्रोग्राम में आए हैं, आप सभी हॉल में आ जाइए। अब हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज का फर्स्ट हमारा कल स्वागत सत्र हुआ था और आज उद्घाटन सत्र है। हम सभी के लिए बड़े खुशी की, गौरव की, आनंद की ये वेला है कि जिस वेला में हम सब बैठकर अब एक सागर मंथन करने जा रहे हैं, जो हक की हम जानते हैं आप सब समाज सेवक सोशल लीडर्स से, और सोशल लीडर्स जो कार्य करते हैं वो बहुत दिल व जान सिख व प्रेम से समाज के लोगों के लिए राहत दिलाने का कार्य, जो कुछ कमी होती है उनके पास उसको पूर्ण करने का कार्य करते हैं, और निस्वार्थ भाव से जो हम सेवा करते हैं उसका पुण्य भी हमारे पास जमा होता है। कहते हैं भगवान ने जो कुछ दिया होता है उसमें से थोड़ा भी अगर हम समाज के प्रति कार्य में लगाते हैं तो उसका कहीं गुना, दुआएं और पुण्य जो है वो जमा होता है। तो सच तो ये कहे कि सेवाएं तो हम सभी करते हैं, परंतु अभी इस सेवाओं के साथ साथ हम सभी को एक नया दृष्टिकोण, नया आयाम अपनी सेवाओं में जोड़ना होगा, और वह है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता मनुष्य को उस शिखर तक पहुंचा देती है कि जहां भी हम जिस लक्ष्य को पाना चाहे वो लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए जीवन में आध्यात्मिकता की बहुत वर्तमान समय आवश्यकता है। इसीलिए आज के इस प्रोग्राम में आप कहेंगे कि हमारी जिस भी स्थान से बहन जी हम आए हैं, जहां से भी हम यहाँ पधारे हैं, तो हमें तो बहनों ने इनवाइट किया, या किसी हमारे नजदीक के मित्र संबंधी है वो हमें इनविटेशन देने आए थे। किसी को 5 साल से निमंत्रण बहने देती रही, भाई बहन जाते रहे, लेकिन फिर भी आने का वक्त नहीं था, तो सोच रहे थे कि जाएंगे कभी न कभी, लेकिन हर बार देखो तो वो भाई या बहन हमें इनविटेशन देने के लिए आते रहे। हम थक गए पर वो नहीं थके, उसका कारण क्या? हम पहुंच गए आज, उसका कारण था कि वो इनविटेशन आत्माओं से नहीं, वो परमात्मा का था। और जो सेवक भाई बहने हैं वो अपने ही उमंग उत्साह से वो सेवा करना चाहते हैं कि जो भगवान ने उन्हें दी हुई है। इसीलिए आप भगवान के घर में आए हैं, भगवान के घर का आप श्रृंगार है, और उनके निमंत्रण से जो पधारे हैं उनके लिए तो क्या कहना। इसीलिए आप सबका आज के स्वागत सत्र में अभिनंदन है, अभिवादन है और स्वागत भी है। इस मंगलमय वेला में, उज्जवल प्रकाश में और शीतल हवाओं के बीच हम जा रहे हैं आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करने। किस कार्यक्रम की शुरुआत? समृद्ध एवं सशक्त समाज की कुंजी आध्यात्म है। यूं देखा जाए कुंजी से तो सबका प्यार होता है ना? सभी का प्यार कुंजी से। अगर घर में अपने कपाट की कुंजी रह जाए और हम बाहर निकल जाए तो कहां जाता है पहले मन? भाई फोन कर दे वो कुंजी संभाल के रखे। और भगवान हमें अपने जीवन को ऊंचा बनाने वो कुंजी देने आए हैं, तो सोचिए आप कितने भाग्यवान हैं। कुंजी यूं ही किसी को नहीं दी जाती, लायक को कुंजी मिलती है ना? ऐसे तो आप अपने को वो प्रभु प्यार के पात्र आत्माएं हैं जिनको आज वो कुंजी मिलने वाली है, यहां पर वो प्राप्त करके जाना है, उसे इतना संभाल के जाना है, अनेकों की जीवन बनाने के लिए ये कुंजी काम में आएंगे। सत्र में चलते आपको कुंजी जो है उसका अनुभव होगा। आध्यात्मिक एवं धार्मिक, परोपकारी एवं सांस्कृतिक, वैज्ञानिक एवं राजनैतिक, देशभक्त, अन्य उद्देश्यों को लेकर के जहां एक साथ अनेक व्यक्तियों का समूह होता है उसको समाज कहा जाता है। हम सब समाज में रहने वाली सभी व्यक्तियां हैं, इकाई है एक से, और संगठन ये समाज कहलाता है। अध्यात्म वो चीज है, एक दर्शन, एक चिंतन, विद्या, जो हमारी संस्कृति की, भारतीय संस्कृति की दिव्य विरासत भी है। ऋषि मुनियों के चिंतन का निचोड़, अपनी गीता ज्ञान का निचोड़ या प्रसाद कहे, वो तो आध्यात्म ही कहलाता है। साथ ही साथ आत्मा परमात्मा, मुक्ति जीवन मुक्ति, जन्म मरण, जीवन में कर्मों का ज्ञान, यही तो आध्यात्म कहलाता है। परमात्मा से हमारे दिव्य संबंध, यही तो आध्यात्म की एक महानता है। तो चलिए हम आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज के हमारे कार्यक्रम में मुख्य आशीर्वचन देने के लिए हम सभी के बीच पधार रहे हैं राजयोगिनी संतोष दीदी जी। आपकी तालियां कम नहीं होनी चाहिए, अब तक सरकार ने तालियों पर जीएसटी वैट आदि कुछ लगाया नहीं है, और हम सब जानते हैं कि ताली एक बहुत सुंदर एक्सरसाइज भी है, इसीलिए जोरदार ताली, 1 2 3, 1 2 3। साथ ही साथ मैं निवेदन करूंगी आज के कार्यक्रम की, हमारे चीफ गेस्ट श्री तीर्थ सिंह रावत जी, आप गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से पधारे हैं, तो आपसे भी निवेदन है कि आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। साथ ही साथ हमारे समाज सेवा प्रभाग के उपाध्यक्ष प्रेम भाई जी, आप भी मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। आज के गेस्ट ऑफ ऑनर अमरावती से पधारे हमारी कीर्ति बहन चिंतामणि जी, सबके चिंताओं को दूर करने वाली कीर्ति बहन, आपका भी मंच पर स्वागत है, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। हमारे अवतार भाई जी जो समाज सेवा प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक है, मुख्यालय में रहते हैं, मैं निवेदन करूंगी अमरावती से पधारी सीता बहन जी, और दिल्ली से पधारे आशा बहन जी और वीरेंद्र भाई जी, मैं सभी का तहे दिल से मंच पर स्वागत करती हूँ, अभिवादन करती हूँ, सत्कार करती हूँ। हम बात करने जाएंगे कि समाज, आध्यात्म और मूल्य। आजकल अगर हम स्कूलों में जाते हैं तो बच्चों को हम मूल्य क्या चीज है ये पूछते हैं, तो बच्चे मूल्य का जवाब देते हैं, मैडम मूल्य वो चीज है जो मार्केट में हम सब्जी खरीदने जाते हैं तो वहां पूछा जाता है इस चीज का मूल्य क्या। साथ ही साथ गिफ्ट खरीदने जाते हैं तो उस गिफ्ट का मूल्य पूछते हैं, और हमारी बुक्स है उस पर भी मूल्य अर्थात वो कीमत को समझ लेते हैं। ऐसे ही जीवन का जो मूल्य है, मैं अनुरोध करती हूं कि आज के जो हमारे मुख्य अतिथि है, हम सभी के बीच पधारे हैं श्री तीर्थ सिंह रावत जी, आप मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। ज्ञान सरोवर के डायरेक्टर राजयोगिनी सुदेश दीदी जी से नम्र अनुरोध है, आप भी आकर स्थान ग्रहण करेंगे। राजयोगिनी संतोष दीदी जी, कहते हैं हेल्थ को बनाए रखने के लिए मौसम्बी का जूस, पर मेहमानों के स्वागत के लिए आपकी तालियों की रास, तो चलिए जोरदार तालियों से मंचासीन सभी महानुभावों का हम स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भगवान के घर में भगवान के रत्नों का ये प्यारा स्वागत, नैनों से स्वागत, वाणी से स्वागत, लाए संकल्पों के हार, आप आए प्रभु पिता के द्वार, तो आप सबका भी स्वागत है, स्वागत है, अभिनंदन है। जोरदार करतल ध्वनि से अपने आप का स्वागत कीजिए। महचंद भाई जी, आप बड़े ही प्यार से हमारे मुख्य अतिथि आज के उनको लेकर के आए उत्तराखंड से, आपका भी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की विधि के अनुसार हम हर कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु पिता की याद से करते हैं, जिनकी प्रेरणा से ये प्रोग्राम चलते हैं। तो चलिए उस निराकार ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा को हम याद करते हैं। अब मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से निवेदन करती हूँ कि मंचासीन सभी मेहमानों का समाज सेवा प्रभाग से विशेष आपके स्वागत और सम्मान में बना हुआ ये दुशाला, जो बहनें आपको ओढ़ाकर स्वागत करेंगी, साथ ही साथ बैच, गुलदस्ते और आपकी तालियों की गड़गड़ाहट। कहते हैं बैठे बैठे कुछ करना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जरा ताली बजाएंगे और जोर से, और जोर से। आदरणीय राजयोगिनी संतोष दीदी जी, सुदेश दीदी जी, हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री तीर्थ सिंह रावत जी, बहन कीर्ति जी, प्रेम भाई जी, महचंद भाई जी, अवतार भाई जी, सीता बहन जी, आशा बहन जी, और वीरेंद्र भाई जी। अब इस स्वागत श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। हम सबके बीच आ रहा है कल्चर ग्रुप अमरावती महाराष्ट्र से, जो बहनें अपनी प्रस्तुति देंगी। अब मैं निवेदन करती हूँ, सदैव एवर रेडी भगवान के घर में अपने मधुर वाणी के द्वारा, संगीत के द्वारा, और हमारे सतीश भाई स्वरचित गीत बनाते हैं, और ये आप सभी का स्वागत करने के लिए आ रहे हैं मधुर वाणी ग्रुप। सतीश भाई, नितिन भाई, एंड पार्टी जो हम सबका स्वागत करेंगे अपने मधुर संगीत और गीत के द्वारा। ये भाई कहीं पर भी इन्होंने गीत संगीत की ट्रेनिंग नहीं ली है, लेकिन अपने ही परमात्मा पिता को याद करके अपनी कलाओं को आपने विकसित किया, ईश्वरीय कार्य में लगाते। और आपके साथ गोविंद भाई भी है जो अपना साथ दे रहे हैं मधुर वाणी ग्रुप।
समृद्ध और सशक्त समाज की नींव है, कुंजी है आध्यात्मिकता, और आज की आवश्यकता है पूंजी है आवश्यकता, पूंजी है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता से आओ हम सबका कल्याण करें, सच्चे समाज सेवकों का दिल से स्वागत सम्मान करें, दिल से स्वागत सम्मान करें। एक बार अपने अभिनंदन के लिए आपका लिए
की पूंजी है आध्यात्मिकता, आज की आवश्यकता है पूंजी है आध्यात्मिकता, पूंजी है आध्यात्मिकता।
म्यूजिक।
आध्यात्मिकता से सबका आओ हम कल्याण करें, सच्चे समाज सेवकों का हम स्वागत सम्मान करें, हम स्वागत सम्मान करें। रे घर सागा मगर माँ समर करता, रे सनी रे घर सागा मगर माँ पगर ज करता। सच्ची समाज सेवा है सबको सचरित्र बना देना, आत्मज्ञान करा करके परमात्मा से मिला देना, घर घर को है स्वर्ग बनाना, घर घर को है स्वर्ग बनाना। आधार आध्यात्मिकता आज की आवश्यकता है, पूंजी है आध्यात्मिकता, पूंजी है आध्यात्मिकता। समृद्ध सशक्त समाज की पूंजी है आध्यात्मिकता, आज की आवश्यकता है पूंजी है आध्यात्मिकता, पूंजी है आध्यात्मिकता।
यह ऐतिहासिक पल बड़ी प्रसन्नता के हैं, सबके कर्तव्य ध्वनि लगातार चलने के लिए।
आध्यात्मिकता बीज है और प्रेक्षित सद्व्यवहार है, तना है इसमें राजयोग और पुष्प शांति उपहार है, फल सुख में संसार है, फल सुख में संसार है, शोभा है आध्यात्मिकता। आज की आवश्यकता है, पूंजी है आध्यात्मिकता, पूंजी है आध्यात्मिकता। समृद्ध सशक्त समाज की पूंजी है आध्यात्मिकता, आज की आवश्यकता है, पूंजी है आध्यात्मिकता, पूंजी है आध्यात्मिकता। रे सनी रे गर सागा मगरे मा सगरे जकार था, रे सनी रे गर सागा मगरे मा सगरे जकार था। आबू तीर्थ है पुण्य धरा, सब धन्य धन्य हो जाते हैं, ज्ञान सरोवर में अगणित जीवन कमल मुस्काते हैं। आपको कब से पुकारती, आपको कब से पुकारती, आवाज दे आध्यात्मिकता, आज की आवश्यकता है, पूंजी है आध्यात्मिकता, पूंजी है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता से सबका आओ हम कल्याण करें, सच्चे समाज सेवकों का हम स्वागत सम्मान करें, हम स्वागत सम्मान करें, आओ हम कल्याण करें, हम स्वागत सम्मान करें, आओ हम कल्याण करें, हम स्वागत सम्मान करें, आओ हम कल्याण करें, हम स्वागत सम्मान करें।
बहुत बहुत धन्यवाद मधुरवाणी ग्रुप। अब हम सबके बीच में आ रही है हमारे अमरावती की कुमारिया, जिनके अंदर इतना उमंग उत्साह है क्योंकि नेपाल और भारत के हर कोने से आज आप सब समाज सेवक पधारे हैं। तो मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ कि अपना स्वागत नृत्य प्रस्तुत करेगी अमरावती ग्रुप।
स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका,
स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका।
खिली है कलियां सजे है द्वार, खिली है कलियां सजे है द्वार, इंतजार। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। मन है महका दीदार आपका पाकर,
पूरे किए दिल के अरमान स्वयं यहाँ पे आकर,
स्वयं यहाँ पे आकर, आप आए धन्यवाद आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका,
स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका।
खिली है कलियां, सजे है द्वार, खिली है कलियां, सजे है द्वार,
आए हैं दिल का
था इंतजार, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। हृदय से वेलकम आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका,
स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका।
खिली है कलियां, सजे है द्वार, खिली है कलियां, सजे है द्वार, इंतजार, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका।
धन्यवाद इन कुमारियों का जो अपनी पढ़ाई पढ़ते भी आध्यात्मिकता और सेवा में रुचि रखते हुए समय निकालकर प्रैक्टिस कर अमरावती महाराष्ट्र से यहाँ पधारी है, इसीलिए दिल से आपका धन्यवाद। आप सब बहुत दूर से आए, हमें इस बात का बड़ा एहसास होता है, समय निकाल करके आते हैं और भगवान के घर में पधारे हैं, तो अभी आपका स्वागत और भी हम करना चाहते हैं। और उस स्वागत के लिए हमारे बीच पधारे हैं हमारे मेहरचंद भाई जो उत्तराखंड से हैं, जिन्होंने अपने जीवन में आध्यात्मिकता और ईश्वरीय सत्ता को इतना महत्व दिया कि लौकिक अपने एजुकेशन में अब ऑफिसर के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन उस डिपार्टमेंट में कार्य करते भी आपने उत्तराखंड की, पंजाब हरियाणा की सेवाओं को आगे बढ़ाया और आज वे हम सबके बीच में हैं, जिनके लिए यही कहा गया, जिनके जीवन का उद्देश्य है दुआएं मिले बड़ों से, साथ मिले अपनों से, खुशियां मिलती रहे, रहमत मिले रब से और खुशियां मिले जमाने से, प्यार मिले सबसे, यही दुआ है प्रभु से। आप ऐसी सेवा करते हैं और करते रहे, तो मैं भ्राता मेहरचंद जी से कहूंगी कि अपने दिल के पुष्पों से आप हमारे मेहमानों का स्वागत करेंगे। स्वागत वचन।
ओम शांति। समाज सेवकों के इस कार्यक्रम में मुझे स्वागत करने की ड्यूटी दी है, क्योंकि समाज सेवक एक भगवान का रूप होता है, उसमें करुणा, दया, परोपकारिता, संवेदना ये भावनाएं होती हैं और यही गुण हमको मनुष्यों से, पशुओं से अलग करते हैं। समाज सेवक इन गुणों को लेकर चलता है, और समाज की सेवा करता है। मैं सर्वप्रथम परमात्मा पिता का धन्यवाद करता हूँ, बुझी हुई हर मानव की ज्योत जगाने, बुझी हुई हर मानव की ज्योत जगाने वह समय इस संसार में आता है तो सबसे पहले वंदन करता हूँ उस पिता को जो दिव्य चक्षु के दाता हैं, जो दिव्य चक्षु के दाता हैं। हमारे बीच में समाज सेवा प्रभाग की अध्यक्षा, महाराष्ट्र जोन की डायरेक्टर और इस संस्था की ज्वाइंट हेड राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी संतोष दीदी जी बैठे हैं। कहते हैं कि इतर ही मैका नहीं करते, कभी कभी शख्सियत भी खुशबू दे जाती है। ऐसी शख्सियत भगवान ने इस प्रभाग को दी, जिसके कारण ये प्रभाग दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। मैं दीदी की सूरत में दो लाइनें दे रहा हूं। आपकी कीर्ति का वर्णन करने शब्द कम पड़ते हैं, हम अपने नगमों में उपमा के नग जड़ते हैं। दीदी जी, एक दिन आपके कल्याणी कदम का विश्व भर में परचम लहराएगा। अब वो दिन दूर नहीं जब विश्व आपके चरणों पर गिर जाएगा, आपके चरणों पर गिर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी का। हमारे बीच में उत्तराखंड की पवित्र धारा से, देवभूमि से मुख्य अतिथि के रूप में श्री तीर्थ सिंह जी रावत, जो कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे, पधारे हैं। उनकी सूरत में दो लाइनें दे रहा हूं। अगर दुनिया में मोहब्बत के कारोबारी रहेंगे तो कामयाबी के सफर यों ही जारी रहेंगे। याद रहेंगे आपके साथ बीते हुए खूबसूरत पल, याद रहेंगे आपके साथ बीते हुए खूबसूरत पल। इस हाजिरी के लिए हम आपके आभारी रहेंगे, इस हाजिरी के लिए हम आपके आभारी रहेंगे। आप संघ के पहले प्रचारक रहे, विद्यार्थी परिषद में राष्ट्रीय मंत्री के पद पर रहे, गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष रहे, तत्पश्चात उत्तर प्रदेश सरकार में MLC के पद पर निर्वाचित हुए। जब उत्तराचल बना तब उत्तरांचल में शिक्षा मंत्री के पद पर रहे, उसके बाद चौबटखाल विधानसभा से विधायक के रूप में निर्वाचित हुए, उसके बाद सांसद गढ़वाल के रूप में निर्वाचित हुए और इसी दौरान उत्तराखंड सरकार में CM के पद पर भी आसीन रहे। आप बहुत ही मधुर भाषी, मिलनसार, सौम्य प्रवृत्ति के मंत्री रहे हैं और पब्लिक में आपकी बहुत अच्छी छाप रही है। तो हमें खुशी हुई है कि आज आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। लास्ट में दो लाइनें और दे रहा हूं आपके लिए। आपकी नेकियों को कहां तक बखान करें, वह शब्द नहीं जो आपकी गरिमा का बयान करें। आप तो अपने आप में शहंशाह हैं हजूर, आप तो अपने आप में शहंशाह हैं हजूर। वो शख्सियत हैं आप जिन्हें सब सलाम करें, वो शख्सियत हैं आप जिन्हें सब सलाम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे दीदी सुदेश दीदी जी, जो के इस कैंपस के ज्ञान सरोवर अकेडमी के डायरेक्टर हैं, इस संस्था के ज्वाइंट हेड हैं और इस आयु में भी दिन रात सेवा में व्यस्त रहते हैं। जब हमें पता चला कि डॉक्टर निर्मला दीदी अव्यक्त हो गए, किसी ने मेरे से पूछा कि अब कौन बनेगा वहां डायरेक्टर। मैंने कहा कि इस संस्था के क्षितिज पर मुझे तो एक स्टार नजर आता है, वो है सुदेश दीदी जी। बने कोई, परंतु मेरा अंदर का विचार है परंतु जब बाद में पता चला कि सुदेदी जी ही डायरेक्टर बने तो हमें बड़ी खुशी हुई। मैं सुदेदी जी के लिए दो लाइनें लिखी हैं। धरती सा धीरज दिया, दीदी में बहुत सहनशीलता है। धरती सा धीरज दिया आसमान सी ऊंचाई, क्योंकि इतने ऊंचे पद पर खुदा ने तराश कर ये तस्वीर बनाई। ज्ञान गुणों और शक्तियों से वह इनको भरते रहते हैं, ज्ञान गुणों और शक्तियों से वो इनको भरते रहते हैं। ऐसी सजीव प्रतिमा को, ऐसी सजीव प्रतिमा को हम सुदेश दीदी जी कहते हैं, सुदेश दीदी जी कहते हैं। हमारे बीच में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में, अच्छा, हमारे बीच में कीर्ति बहन जी हैं, अमरावती से पधारे हैं, जेल सुपरिटेंडेंट हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई है, उनके लिए मैं दो लाइनें दे रहा हूं। हे आसमां तुझे लाखों तारे मुबारक, हे आसमां तुझे लाखों तारे मुबारक, एक चेतन सितारा माउंट आबू की धारा पर आ गया है। हे सागर तुझे लाखों माणिक मोती मुबारक, एक चेतन मोती आबू के भाई बहनों को भाग गया है, आबू के भाई बहनों को भाग गया है। धन्यवाद बहन जी। हमारे बीच में इस सोशल विंग के वाइस चेयरपर्सन भ्राता प्रेम जी, जो के गुलबर्गा जोन के डायरेक्टर हैं, हमारे बीच में पधारे हैं, उनके लिए भी मैं दो लाइनें दे रहा हूं। और बहुत ही शालीन हैं, कर्मठ हैं, इस उम्र में भी वो सेवाओं में भागते रहते हैं। हमें बहुत खुशी हुई है, उनके लिए दो लाइनें। सुनकर कर दे अनसुना ऐसी इनकी आवाज नहीं, सुनकर कर दे अनसुना ऐसी इनकी आवाज नहीं, मिलकर भूल जाए कोई ऐसे इनके अल्फाज नहीं। किसी महफल में छुप जाएं, किसी महफल में छुप जाएं, ऐसे इनके अंदाज नहीं। सूरज से दमकते हैं ये, किसी परिचय के मोहताज नहीं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। हमारे बीच में अवतार भाई जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर सोशल विंग, कल उनके विचार आप सबने सुने, बहुत ही अच्छे विचार दिए, उनके लिए भी मैं दो लाइनें दे रहा हूं। बहुत ही कर्मठ हैं और सेवाओं में बहुत रुचि रखते हैं। हर लब पर आपका नाम होगा अवतार भाई जी, हर लब पर आपका नाम होगा, हर कदम पर आपको सलाम होगा। बाबा की सेवा दिल से करते रहना मेरे दोस्त, बाबा की सेवा दिल से करते रहना मेरे दोस्त, ये वक्त भी एक दिन आपका गुलाम होगा, ये वक्त भी एक दिन आपका गुलाम होगा। हमारे बीच में दिल्ली से आई आशा बहन जी, जो कि आज मुख्य वक्ता हैं, और अच्छा बोलते हैं, और जोनल हेड हैं वहां के, अपने दिल्ली स्टेट के समाज सेवा पर भाग के, उनके लिए भी मैं दो लाइनें लिखी हैं। उगता हुआ सूरज दुआ दे आपको, उगता हुआ सूरज दुआ दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको, जिंदगी में यही दुआ है आपके लिए, जिंदगी में यही दुआ है आपके लिए, कि उठते हुए हर कदम मंजिल दे आपको, उठते हुए हर कदम मंजिल दे आपको। धन्यवाद दीदी जी। हमारे बीच में सीता बहन जी अमरावती से पधारे हैं, जोनल कोऑर्डिनेटर सोशल विंग हैं, मैं उनके लिए भी दो लाइनें दे रहा हूं उनके स्वागत में। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता, लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। धन्यवाद दीदी जी। और हमारे बीच में इस सारी कॉन्फ्रेंस को, जो अंदर से लगे हुए हैं काफी दिन से कि कॉन्फ्रेंस करनी है। हमारे इस विंग के अब कोऑर्डिनेटर हैं, उनका तो कहना ही क्या, दिन रात लगे रहते हैं और यही प्रोग्राम नहीं, अनेक प्रोग्राम टाइम टू टाइम करते रहते हैं। उनको 24 घंटे एक ही हुंस है कि सोशल विंग इतनी सेवा करे कि सब देखें। उनके लिए मैं दो लाइनें दे रहा हूं। लक्ष्य हर कोई बनाता है, लक्ष्य हर कोई बनाता है, पर पाता वही है जिसका सच्चा ईमान होता है। ये सफलताएं जो सोशल विंग हासिल कर रहा है वो भाई वीरेंद्र की वजह से है। पाता वही है जिसका सच्चा ईमान होता है। वही बदलते हैं रुख हवाओं का, वही बदलते हैं रुख हवाओं का जिनके इरादों में जान होती है, जिनके इरादों में जान होती है। हमारे बीच में आप सब सोशल वर्कर आए हुए हैं, आप भी सोचेंगे हमारे लिए तो कुछ कहा ही नहीं। आपके लिए भी दो लाइनें दे रहा हूं। आप क्योंकि सच्चे समाज सेवक हैं, दिन रात समाज की सेवा में लगे रहते हैं, जो चाहते हो कर गुजरते हैं, अनेक कठिनाइयां सहन करके भी दूसरों की सेवा करते हैं, ऐसे लोग दुआओं के पात्र बनते हैं। जो दुआएं सोशल वर्कर लेता है पब्लिक की, वो कोई नहीं लेता है। इसलिए जो सच्चा सोशल वर्कर है वो खुश रहता है और उसको जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ये मैं दावे से कह देता हूं। पर्वतों को काट कर राह बनाने का दम रखते हैं हम, सोशल वर्कर के लिए है। पर्वतों को काट कर राह बनाने का दम रखते हैं हम, चीर कर तूफानों को मजा चखाने का दम रखते हैं हम। ये तो तरस आ जाता आसमान की खामोशी को देखकर, ये तो तरस आ जाता आसमान की खामोशी को देखकर, वरना उसका सीना भी चीर कर रोशनी फैलाने का दम रखते हैं हम, रोशनी फैलाने का दम रखते हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में दूसरे देश से, नेपाल से भाई बहने आए हुए हैं। देखिए इतनी दूर से आना बड़ी भारी बात है इस कॉन्फ्रेंस के लिए। मैं उनके लिए भी दो लाइनें दे रहा हूं। नेपाल के भाई बहन बहुत कर्मठ हैं और बहुत सेवाधारी। मैं अभी पीछे नेपाल होकर आया हूं, बहुत सेवा हमारी उन्होंने की, हम उनका इतना आभार जताते रहे कि कमाल है इन लोगों की। आपके लिए दो लाइनें दे रहा हूं। पर्वतों को जो धूल बना सकते हैं, पर्वतों को जो धूल बना सकते हैं, उंगली से जो हिमालय उठा सकते हैं, विश्वास रखो ये ऐसे समाज सेवक हैं जो आकाश को भी धरा पर झुका सकते हैं, जो आकाश को भी धरा पर झुका सकते हैं। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता मेहरचंद जी। अब मैं नम्र अनुरोध करती हूँ समाज सेवा प्रभाग के उपाध्यक्ष प्रेम भाई जी से कि वो कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है हम सभी के समक्ष रखेंगे। कर्म भूमि की इस दुनिया में श्रम सभी को करना ही है, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें खुद को भरना है। ऐसे व्यक्तित्व के धनी जिन्होंने अपने जीवन में परमात्म स्नेह को समाया हुआ है, स्वयं पूर्णता जीवन को भगवान के स्नेह में रंग लिया है, ऐसे स्नेह की मूर्ति प्रेम भाई जी कर्नाटक गुलबर्गा सब जोन के आप डायरेक्टर भी हैं। आपको अहमदाबाद यूनिवर्सिटी से गीता अलंकार डिग्री से आप सम्मानित भी है, साथ ही साथ समाज सेवा प्रभाग की चहुओर सेवा बढ़ाने के लिए आप शुभ संकल्प करते रहते हैं। कहा जाता है चिड़िया का काम है चहकना, फूलों का काम है महकना, और हमारे प्रेम भाई जी का नाम ही वो काम करता है कि समाज के हर मनुष्य को स्नेह का इत्र छिड़काकर उनका जीवन आध्यात्मिकता से महकाना। ऐसे प्रेम भाई हमें आज कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य सुनाएंगे। प्रेम भाई जी
ओम शांति।
मुझे विश्वास है कि आप जाते जाते ये महामंत्र ओम शांति का ले जाएंगे। आपने जीवन में बहुत सारे सम्मेलन सेमिनार देखे होंगे। ऐसा कहा जाता है भक्ति सरस अध्यात्म विरस। भक्ति सरस गीत गाना, गीत नृत्य संगीत कला सब कुछ उसमें समाहित है। कल तक हमने यही सोचा था कि ये अध्यात्म हमारा काम नहीं है, परंतु यह संस्था उस विरसता को मिटा करके आप देख रहे हैं कल से कि कैसे उसमें एक पर सरसता ला रहा है। दूसरी बात सेवा, बार बार आपको भी संबोधित किया जा रहा है और मुझे भी सेवा। सारे इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो आपको दिखाई देगा कहीं वृक्ष लगाए जा रहे हैं, कहीं बावड़ी वेल्स खुदाई की जा रही है, कहीं कुछ धर्मशालाएं बनाई जा रही हैं, और भी कुछ होता है, अन्नदान धनदान वस्त्रदान, ये सारे के सारे सेवा में संलग्न है। अब इन पन्नों के बाद यदि हम इनका रिजल्ट देखेंगे तो देखा जाता है कि श्रीमंत की से गरीबी और भी बढ़ती गई, और मनुष्य इतने शास्त्र पुराण, जबकि कहा गया है किम कर्तव्यम किम कर्तव्यम, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तत्र शास्त्र व्यवस्थित हो, वहां शास्त्र हैं, किया शास्त्र का पठन हमने किया, और यदि हमको संस्कृत नहीं आती है तो पंडितों से गुरुओं से भी सुन करके किया, परंतु देखते देखते हमारे चरित्र में एक प्रकार की गिरावट आती गई, हमारा जीवन नशे से धुत होता गया, खान पान की अशुद्धि बढ़ती गई। आज मैं अपने शहर की बात करूं तो 60 के दशक में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं था, एक भी MBBS का डॉक्टर नहीं था, पर हम तो थे, तो तब भी तो वैद्य होते थे जो घरेलू दवाएं करते थे। ऐसे भी बीच में प्रचार हुआ कि दवाइयों का भंडार तो हमारा किचन है। अब एक गली में आपको 8-10 मेडिकल क्लिनिक्स मिलेंगे, मल्टी स्पेशलिटी इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे, और आए दिन हर शहर में 3-3, 4-4, 5-5 मेडिकल कॉलेज खुलते जा रहे। उसके बावजूद भी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, मनुष्य अशक्त होता जा रहा है। इसके लिए क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए कोई भी अग्रसर नहीं होता है। अब ये ब्रह्म कुमारी संस्था भी है, इंस्टीट्यूट भी है, पाठशाला भी है, और हमारा एक परिवार भी है। हम एक परिवार के हैं, हमारे पास दो ही संबंध हैं, पिता परमात्मा और हम उनके बच्चे। यहाँ और गुरुडम नहीं है, न ही कोई डॉगमेटिज्म है। तो ऐसे स्थान पर हम आए हैं जहाँ हमारा जीवन का नया उद्देश्य बताया जाता है, और वो उद्देश्य यह है कि हम जीवन में इस आध्यात्मिकता को अपनाएं, उसे सराबोर हो जाएं, उसे लिप्त हो जाएं, और छोड़े कुछ भी नहीं। अब हम देखते हैं बालिकाएं नृत्य करती हैं, तो उसके अंदर नृत्य महत्व नहीं है, परंतु नृत्य के माध्यम से जो गीत गाया जाता है वो एक संदेश हमको देता है और सरल रीति से चलने की राह दिखाता है। इसीलिए यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय आज सारे विश्व में पांचों खंडों में व्याप्त दिखाई देता है। हम चाहते हैं कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की इस विद्या को, जिसको विद्या या विद, ये वो विद्या है जिससे हम सेल्फ को समझ सकते हैं, आत्मा को समझ सकते हैं। इसीलिए कहा गया खुद को जान, खुदा को जान, और वक्त मिला तो दुनिया की खाक छान। परंतु
हम लगे हुए हैं दुनिया की खाक छानने में, न खुद को जानने की न उस खुदा को जानने की कोई योजना हमारे समक्ष है। आज हमारी बहनें गली गली, गांव गांव, शहर शहर, राष्ट्र राष्ट्र में ये संदेश दे रही हैं कि हम आपको आपके बारे में बताना चाहते हैं, आपको आपके बाप के बारे में बताना चाहते हैं, और उस बात को और ही गाढ़ रीति से, गहराई से, गहनता से आपके अंदर प्रेषित करें, उसके लिए ये सम्मेलन यहाँ बुलाया गया। ये परिसर भी महत्व रखता है क्योंकि नेचर मनुष्य का प्रतिबिंब है, ये भी समझने की बात है। जैसे ये शरीर है, शरीर को आत्मा चलाती है। आत्मा यदि नीचे स्थिति की होगी, नीच स्थिति की होगी, तो शारीरिक प्रक्रियाएं भी नीच स्थिति की ही होंगी। ऐसे ही प्रकृति, तो प्रकृति के पांच तत्वों से बना यह शरीर आत्मा से चलता है। आत्मा माना मैं, ये पक्का करना है कि ये जो मैं हूं, मेरे से ये शरीर है और इस शरीर से ये प्रकृति चलती है, ये प्राणी चलते हैं। इसीलिए उनकी शुद्धि, उनका श्रेष्ठपन वापस लाने के लिए भी हमको ही निमित्त बनना पड़ता है, ये भी हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। और भी जो सेवा के स्थान पर यदि हम ये कहें कि समाज सुधार, आपने पढ़ा है, सुना है, समाज सुधार के लिए जिन्होंने भी मेहनत की उनका हाल बुरा हुआ, जैसे जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद पैगंबर, दयानंद सरस्वती आदि आदि। अब यहां भी हमने देखा कि प्रारंभिक दिनों में इस संस्था को बहुत बहुत सामाजिक विरोध से गुजरना पड़ा, फिर भी जिसका साथी है भगवान, उसको क्या करेंगे आंधी और तूफान के हिसाब से, ये संस्था बढ़ोतरी को प्राप्त होते होते आज यहाँ आ पहुंची है। आज जो लोग ब्रह्मा कुमारी बहनों को देख करके द्वार बंद करते थे, आज उन्हें द्वार खोल करके कहते हैं आइए हमारे घर में आप पदार्पण कीजिए। कारण क्या है? उनकी धारणा, उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ आध्यात्मिक रस वो प्रस्फुटित होता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि एक एक से दो भले, और ये कहा जाता है एक एक ग्यारह, तो उस बात को साक्षी करने के लिए हमने आपको यहाँ आने का, मैं नहीं कहूँगा कष्ट दिया, पुरुषार्थ किया। हमारी बहनें आपको कई बार बुलाया होगा, एक बार नहीं, कुछ भाई बहनें तो ऐसे आए होंगे उनका टिकट दूसरे के नाम पर होगा, क्योंकि चलते चलते होता है ना, जिसको आना नहीं है वो आना नहीं है तो नहीं आएगा, जिसको नहीं आना है वो आकर के यहाँ रहेगा। और यहाँ का एक प्राकृतिक सुरम्यता, प्राकृतिक संगीत आपको यहाँ सुनने को मिलेगा। एक निवेदन जैसे कल भी बहनों ने किया आपसे कि सब प्रातःकालीन जो यहाँ का माहौल है वो बहुत सुंदर होता है, यदि सवेरे सवेरे आप यहाँ वॉक करेंगे तो निश्चित ही आपको अध्यात्म का एक नया अनुभव होगा। तो मैं ये निवेदन करूं कि अध्यात्म गृहस्थियों के लिए है, क्योंकि घर ऐसे कहा जाता है गृहे तिष्ठति इति गृहस्थ, जो घर में रहता है उसको गृहस्थ कहा जाता है। हम कोई सन्यासी नहीं है, ये बताना भी जरूरी है। लोग ये मानते हैं कि वहां जाओगे तो वहां के हो जाओगे, परंतु ऐसा नहीं है, हम सबके होते हैं। और मैंने गत 55 वर्षों में अनुभव किया इस संस्था में कि यहाँ जो आते हैं भाई बहने, वो अपने पेरेंट्स को भी बहुत प्यार से देखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, और गुरु जैसे होता है उनको भी मर्यादा देते हैं। तो ऐसा एक नया परिवार आपका स्वागत करता है। तो ये परिवार सुंदर परिवार है, निस्वार्थ परिवार है, श्रेष्ठ परिवार है, ईश्वर का परिवार है। तो इस परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन।
नेपाल से कुछ भाई बहन आए हैं जो मंचासीन मेहमानों का सम्मान करना चाहते हैं। मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि आप मंच पर आए, और धन्यवाद प्रेम भाई जी का, जिन्होंने हमें इस कॉन्फ्रेंस का लक्ष्य बताया है। मैं विराटनगर की ओर से आने वाले जो नेपाली भाई बहन हैं, उनको अनुरोध करती हूं कि वो मंच पर आए। अनिल शाह युगल, प्रेमलता बहन, आप मोरम व्यापार संघ के वरिष्ठ अध्यक्ष हैं, विश्व पंथ एनजीओ प्रोफेशनल अध्यक्ष डॉक्टर डीला संगरोला जी, नेपाल कांग्रेस सदस्य, राष्ट्रीय सदस्य है, उषा निर्मला कांडेल जी, सुनील दत्ता जी, आप वाइस प्रेसिडेंट है एन नेपाल प्रदेश के, रविंद्र कुमार जी, आप सब जल्दी जल्दी आइए क्योंकि कार्यक्रम बहुत सारा बाकी है। दुर्गा खनाल जी, साहित्य कला संघ की वाइस प्रेसिडेंट है, पुष्पा भंडारी जी एनएमसी कोऑर्डिनेटर है, आप सभी मंचस्थीन मेहमानों का स्वागत करना चाहते हैं। बी के प्रेम भाई जी का स्वागत करना चाहते हैं, इंदौर के सरजू पटेल पटेल जी और राकेश भामोरिया जी, और भी एक ग्रुप है नेपाल से ही है, आपसे भी निवेदन है कि आप भी मंच पर आए और अपना सम्मान कर दें। नेपाल की विशेषता है कि जहाँ के रुद्राक्ष की माला भी बहुत प्रसिद्ध है और वहाँ का ये सम्मानित करने के लिए छोटा सा दुशाला भी है। शांता देवी शिवकोटी जी अध्यक्ष, बारा दर्शन पालिका झांसी नेपाल, मंजू पुषाई जी पूर्व अध्यक्ष झांसी नेपाल, भानु सूर्यवंशी जी फाउंडर, आप भी मंच पर आए। राजेंद्र पोखरेल जी, आप सब जरा ताली तो बजाइए, थोड़ा कष्ट उठाइए ताली बजाने का। मेयर कानवई महानगर पालिका झापा नेपाल, हेलन पोखरेल जी और उनकी बेटी भी है प्रार्थना, आप सभी से अनुरोध है आप मंच पर आइए। नरमाया कार्की उपमेयर शिव शक्ति नगर पालिका झापा नेपाल से, पशुपति आध्यात्मिक विद्यालय कनकाई नगर पालिका झापा नेपाल की ओर से ही है, आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है कि आप सभी मंचासीन भाई बहनों के रुद्राक्ष की माला से आप स्वागत कर रहे हैं। हमारे पास जो भी नाम आए ये क्या, पुष्पा भंडारी जी, विष्णु शर्मा जी, अब मैं भाई बहनों से अनुरोध करती हूँ कि दीप प्रज्वलन करेंगे अभी हम, उसकी तैयारी कर ले, मंच पर दीप लेकर के आए। मंचासीन सभी मेहमान, और मैं कुछ बहन भाइयों के नाम लेती हूँ जो मंच पर आएंगे दीप प्रज्वलन करने के लिए, बहने तैयारी कर ले। बीके शैलजा बहन जी छतरपुर से, बीके सरिता बहन जी दिल्ली से, बीके शिवलीला बहन जी गुलबर्गा से, बीके पूनम बहन चंडीगढ़, अन्नपूर्णा बहन इंदौर, नीति बहन अंबाला, अंकिता बहन अजमेर, सुरेश बहन दिल्ली परमपुरी, नीलम बहन श्रीनगर गढ़वाल से, अशोक बहन विराटनगर नेपाल से, प्रीति बहन सिरसा हरियाणा से, बिंदु बहन मिर्जापुर, सुनीता बहन मेरठ, बाबू भाई गांधीराम से, सुनील भाई चरखी दादरी से, दीपेश भाई ओआरसी दिल्ली से, ओम शांति रिट्रीट सेंटर दिल्ली, कप्तान शशांक जी जयपुर से, विष्णु पंत विराटनगर नेपाल से, अनिल शाह विराटनगर नेपाल से, लक्ष्मीचंद भाई रुड़की से, रेखा बहन सूरत से, गीता बहन नरोला और सुन्ना बहन जयपुर से आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आप भी मंच पर आएंगे दीप प्रज्वलन करने के लिए, और बीच में सज्जित राव सिंह, साथ ही सज्जित भाई साहब आप भी आएंगे। आइए, और मंचासीन मेहमान मध्य में आएंगे, राजोगिनी संतोष दीदी जी, आदरणीय सम्मानीय पूजनीय हमारे सुदेश दीदी जी, और आज के कार्यक्रम के श्री भाता रावत जी, प्रेम भाई जी, आप सभी बीच में आकर कैंडल लाइटिंग करेंगे, और सभा में उपस्थित जितने भी हमारे मेहमान हैं, हम सभी के पास बहुत अच्छे सुंदर मोबाइल हैं, आप उसमें से भी अपना बैटरी ऑन कीजिए खड़े रह करके, और उसको आप भी उद्घाटन सत्र में अपना दीप प्रज्वलन अपने स्थान पर खड़े रहकर कीजिए। जिन भाई बहनों के हाथ में मोबाइल है अपनी टॉर्च को ऑन कर दीजिए, और ऐसे लग रहा है कि जैसे दिन में ही सितारे चमक रहे हैं। आज का विषय समृद्ध सशक्त समाज की कुंजी आध्यात्म, समाज आध्यात्म और मूल्य
जनाए,
ये जो दीप प्रज्वलन हो रहे हैं पूरे विश्व में,
शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में,
सब मन ही मन संकल्प करें
होगा
आज के दिन से इस उद्घाटन सत्र में हम अपने जीवन में आध्यात्मिक
संकल्पों के दीप जलाए
और जीवन को और विश्व को सुख शांति में बनाए।
परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला, राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला, दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से तन में,
जो आप सभी ने कैंडल लाइटिंग कर इतना सुंदर उद्घाटन कर दिया है, जो इस आध्यात्मिक शक्ति का प्रकाश पूरे विश्व के कोने कोने में जरूर पहुंचेगा। आज के उद्घाटन सत्र में हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए हमारी दिव्य मूल्यों की खान संतोष दीदी जी हम सभी के बीच में है। कहा जाता जरूरत नहीं है हर चीज कोई वस्तु ही गिफ्ट में हो, प्रेम परवाह अहिंसा क्षमा रेस्पेक्ट सेवा भाव जिनके जीवन में हीरे मोती से जैसे जड़े हुए हैं, ऐसे दिव्य दर्शनीय प्रातः स्मरणीय राजयोगिनी संतोष दीदी जी है। आजीवन आध्यात्मिकता की मशाल हाथ में लेकर विश्व के कोने कोने में परमात्म संदेश पहुंचाने का दिव्य कर्तव्य आप कर रहे हैं। आप ब्रह्मा कुमारीज की संयुक्त मुख्य प्रशासिका भी है। आजीवन भगवान ने आपने अपने जीवन का सच्चा सच्चा सतगुरु बना दिया, जिस सतगुरु के पथ प्रदक्षक बनकर के आपके जीवन को दिव्य गुणों से सजा दिया। आपकी सादगी और आपका विश्व के प्रति जो प्रेम है वो अवर्णनीय है। आप सदैव यही कहते हैं कि हम तो क्या भगवान को दे सकते, भगवान ने ही हमें अपना लिया, धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को भा गए, गा रही है जिंदगी, काम उनके आ गए, इसीलिए आप हर पल हर घड़ी उनका शुक्रिया करते हैं ऐसे दिल से। भगवान को दिल में संजो कर रखने वाली, भगवान का संदेश संदेश पुत्री बनकर विश्व में देने वाली, हम सबको संतुष्ट करने वाले हमारे संतोष दीदी जी आज फिर से हमें उद्घाटन सत्र पर हमें ब्लेसिंग देंगे, आशीर्वाद वरदान के रूप में हम सब लेंगे। जोरदार करतल ध्वनि के साथ दीदी जी आपका स्वागत है, अभिवादन है, सत्कार है दीदी जी।
ओम शांति। आध्यात्मिकता के द्वारा समृद्ध और सशक्त समाज कैसा बने, खास से बड़ा सुंदर विषय रखा गया है। समृद्ध बनने के पहले सशक्त बनने की आवश्यकता। अगर सशक्त बनते हैं तो समृद्ध जरूर बन जाते हैं। शरीर के हिसाब से सशक्त नहीं, परंतु आत्मा को सशक्त करने की आवश्यकता। जिसमें शक्ति होती है उसको ही सशक्त कहा जाता है। इसीलिए आध्यात्मिकता हमें ये सिखाती है, सशक्त अर्थात स्वराज अधिकारी, अपनी कर्म इंद्रियों के ऊपर राज करने वाला ही सशक्त है। आज हम देखते हैं मनुष्य दूसरों के ऊपर राज करना चाहता है, दूसरों की अपनी मान्यताएं मनाना चाहता है, दूसरों को अपने आगे झुकाना चाहता है। परंतु जरा सोच के पूछिए, हमारी कर्म इंद्रियां हमारा सुनती है या हमें धोखा देती? कभी आंखें धोखा दे रही हैं, कभी कान धोखा दे रहे हैं, कभी मुख जो नहीं बोलना है वो बोल रहे हैं। उसी प्रकार जब ईश्वरीय याद में बैठने की कोशिश करते हैं तो मन कहां कहां भागना चालू कर देता है। जब रिश्तेदारों को मित्रों को याद करते तभी कोई कंप्लेन नहीं करता है कि हमारा मन भागता है, पर जब ईश्वर को याद करते हैं तो कहते हैं क्या करें बहन जी, दो मिनट भी एकाग्र नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा ना सूक्ष्म कर्म इंद्रियों के ऊपर राज है और ना हमारा स्थूल कर्म इंद्रियों के ऊपर राज है। आज समझो ये हाथ है, मुट्ठी बंद हो जाती है, अगर वो खुलती नहीं है तो हम समझते इसमें कोई ना कोई डिफेक्ट है। हम लोग भागते हैं डॉक्टर के पास कि देखिए क्या डिफेक्ट है, उसको कैसा निकाला जाए, उसकी हम चिंता करते हैं। परंतु क्या इस बात की हम कभी चिंता करते कि हमारा मन हमारे वश में नहीं है, हमारी आंखें हमारे वश में नहीं है, जो नहीं देखना चाहिए वो देख लेते हैं, जो नहीं सुनना चाहिए वो सुन लेते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल लेते हैं। तो ये आध्यात्मिकता ये सिखाता है, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सोचो। आप देखेंगे उसके लिए हमें अंतर्मुख होने की आवश्यकता है, अर्थात आत्मिक स्थिति में स्थित होने की आवश्यकता है। ये जो मुख है इसके अंदर यहां जहां आत्मा बैठती है उस स्थिति में स्थित होकर के जब हम देखते हैं तो हमारी ये जो स्थूल कर्म इंद्रियां हैं, आप आंखों को देखेंगे तो इनको भी दरवाजा है, अगर मुझे नहीं देखना है तो मैं बंद कर सकती, अगर मुझे नहीं बोलना है मुख को भी दरवाजा है मैं बंद कर सकती हूं, परंतु कानों को दरवाजा नहीं, दोनों भी कान खुले, इसको हमें अंदर से दरवाजा लगाना पड़ेगा। और आध्यात्मिकता पहली बात ये बताती है कि बुरा मत सुनो, क्योंकि हम जैसा सुनते हैं वैसी हमारी दृष्टि बनती है हम जैसा सुनते हैं वैसे कभी बोल निकल जाते हैं, हम जैसा सुनते हैं वैसा सोच निकल जाता, सोच हो जाता है। तो अभी हम देखते हैं इसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए। आज अगर कोई भी घमासान होता है, रेट्स होते हैं, आप बाजार में जाके देखिए सबसे पहले क्या बंद किया जाता है, फटाफट व्यापारी लोग दुकानों के शटर बंद करते हैं, दुकानें बंद करते हैं। अगर दुकानें खुली रखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा नुकसान होगा। तो उसी प्रकार परमात्मा हमें ये कहता है कि आप सबसे पहले ये दो कान बंद करो, इन दो कानों से बुरा सोचना बंद कर डालो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब हम बुरा सोचना पर चिंतन सुनना चालू करते हैं, फालतू बातों की तरफ ध्यान देते हैं, तो हमारी जो कर्म इंद्रियां हैं वो हमें धोखा देना चालू कर देती। आप देखिए ये कान कितने इम्पोर्टेंट से हैं। स्कूल में जब बच्चे गलती करते हैं तो टीचर उनका क्या पकड़ता है, कान पकड़ते हैं। जब भी कोई सजा मिलती है तो क्या पकड़ा जाता है, खुद के कान पकड़े जाते। तो ये जो कान है, ये कान जो है परमात्मा कहता है इसको सोनी बनाओ, अर्थात इसमें हमेशा अच्छी बातें डालो, बुरा सोचना बंद कर डालो। हमें सबको मालूम है इस बात का कि मंथरा दासी ने क्या किया और उसकी रिजल्ट क्या रही। तो इसीलिए उसी प्रकार हम देखते हैं कि ये जो मुख है, जिस मुख से हम बोलते हैं, डबल काम करती है कर्म इंद्री, खाने का भी काम करती है, बोलने का भी काम करती है। तो परमात्मा पिता हमें ये सिखाता है आप सात्विक भोजन खाओ, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन बनता है। आध्यात्मिकता हमें ये सिखाती है आप कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। परंतु आज जो सारे दुनिया में समाज में झगड़े हैं उसका कारण क्या है, ये बोल। कहा जाता है ये जो वाणी है ये पट पर भी बिठाती है तो खट के ऊपर भी बिठाती है, इसीलिए वाणी के ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल होना चाहिए। तो वाणी के ऊपर कंट्रोल करने के लिए हमारे को थोड़ा झुकना सीखना पड़ेगा। आप देखेंगे जब बच्चे का जन्म होता है उसके मुख में जीभ जरूर होती है, और उसके बाद क्या होता है, जैसा बड़ा होता जाता है फिर धीरे धीरे उसको दांत आते हैं। जीभ पहले से होती है और जब आत्मा शरीर छोड़ती है तभी भी उसके मुख में जीभ होती है, परंतु दांत बाद में निकलते हैं और मरने के पहले टूट जाते हैं। कारण क्योंकि वो कड़क और स्ट्रांग है, इसीलिए क्या होते हैं वो टूटते हैं, परंतु जीभ जो है वो लचीली है। तो उसी प्रकार अगर हमारे अंदर नम्रता है, अगर हमारे अंदर झुकने की संस्कार है, तो कहते हैं दुनिया झुकती है परंतु उसको झुकाने वाला चाहिए। तो अगर हमारा अपनी जीभ के ऊपर, अपने मुख के ऊपर कंट्रोल हो जाता है तो उससे आपसी झगड़े समाज के बंद हो जाते, परिवार के बंद हो जाते, हमारे संबंध मधुर हो जाते। फिर हम देखते हैं ये आंखें हैं, आंखों के द्वारा हम देखते हैं, ये दो खिड़कियां हैं। आप देखेंगे घर में भी दो चीजें होती है, एक होता है आईना और दूसरी होती है खिड़कियां। मनुष्य खिड़की में आईने में क्या देखता है, खुद का मुखड़ा देखता है, और खिड़की में क्या देखता है, बाहर देखता है। आज यही बहुत बड़ी गलती कर दिया है मानव ने, जो उसको खुद को देखने का समय नहीं है वो बाहर ज्यादा देखता है। कहा जाता है मुखड़ा देख ले प्राणी ज्ञान के दर्पण, अपना मुखड़ा ये मुखड़ा नहीं परंतु अपना चरित्र देख, अपने लक्षण देख, और अपने को देख करके अपने को परिवर्तन करो। तो आज खुद को परिवर्तन करने के बजाय दूसरों को परिवर्तन करने के पीछे लगे हुए हम, ये ऐसा करता है, इसका स्वभाव ऐसा है, इसके संस्कार ऐसे हैं, इसके कारण मेरे को ब्लड प्रेशर हो गया, उसने ऐसा बोला इसीलिए हमारी हार्ट बीट बढ़ गई, ये क्या है? आज समझो हो कोई झूठ बोलता है, कहते है, वैसा तो बहन जी हमको क्रोध नहीं आता है, पर जब भी कोई झूठ बोलता है ना तभी मेरे को एकदम क्रोध आता है, और जब भी क्रोध आता है तभी क्या होता है, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है, मेरे को टेंशन हो जाता है। अभी क्रोध किया और रॉन्ग किया उसने, ये तो सब समझते नहीं समझते, आप लोग समझते, जो समझता है क्रोध करना रॉन्ग है, रॉन्ग है ना, तो क्रोध उसने किया, सजा किसको मिली? जिसने क्रोध किया, जिसने गलती किया उसको सजा मिलनी चाहिए ना, परंतु उसको सजा मिलने के बजाय मेरे को सजा मिली, मेरा हार्ट हिलने लगा, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो आप बताइए ये कौन सी समझ है? गलती एक करें और उसकी सजा दूसरा भोगे। तो आध्यात्मिकता हमें ये सिखाती है कि आप दूसरों को देखने के बजाय खुद को देखना सीख जाओ, दूसरों के ऊपर राज करने के बजाय आप खुद की कर्म इंद्रियों के ऊपर राज करो, अपने मन को वश में करो, अपने मन को कंट्रोल में करो। तो वो कहा जाता है जो अपनी कर्म इंद्रियों का राजा बनता है, स्वराज अधिकारी बनता है, वही विश्व राज अधिकारी बन सकता है। तो इसीलिए हमारे को आध्यात्मिकता में ये जो स्वचिंतन और स्वदर्शन सिखाया जाता है, इससे हम आत्माएं सशक्त बनती है, आत्मा सशक्त बनने के बाद हम समृद्ध हो जाती है। समृद्ध सिर्फ धन से नहीं होते हैं, आज देवी देवताओं का गायन है सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न, वो समृद्ध है। क्यों संपन्न है? क्योंकि उनके अंदर सब गुण है, इसीलिए उनके पास संपन्नता है। और जिस समय सर्व गुण है, सर्व शक्तियां हैं, सर्व विशेषताएं हैं, तो ये जो स्थूल साधन है ये भी उनकी दासी बन जाती। इसीलिए कहा जाता है नई दुनिया में दूध घी की नदियां बहती है, वहां पर हीरे जवाहरातों के महल होते हैं, क्योंकि वहां पर देवी देवता ही निवास करते हैं, देवता माना ही देने वाला। तो हमको ये सीखना है कि मुझे देवता बनना है, अर्थात मुझे सबको देना सीखना, क्या देना है, सबको रिस्पेक्ट देना है, सबको प्यार देना है। हम जितना जितना औरों को रिस्पेक्ट देंगे, औरों को प्यार देंगे, उतना उतना हमारे पास भी शांति रहेगी और हमारे परिवार में, हमारे समाज में भी सुख और शांति आती जाएगी। तो आध्यात्मिकता इसीलिए सिखाई जाती है कि हमारा जो जीवन है वो सर्व गुणों से संपन्न बन जावे, सर्व शक्तियों से समर्थ बन जावे और हमारा जीवन सदा के लिए सुखी और शांत हो जावे। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पर आए हैं, तो अपने जीवन को सदा के लिए ऐसा संपन्न, दिव्य गुणों से सुशोभित बना करके ऐसा श्रेष्ठ संकल्प लेके जाएंगे। आप कहेंगे बहन जी ये कोई जादू मंत्र थोड़े, इतने में थोड़े ही बनता है, इतने में नहीं बनता है, परंतु अगर हम दृढ़ निश्चय करते हैं तो हमारे अंदर धीरे धीरे वो परिवर्तन आता जाता है, और उस परिवर्तन से हमारे अंदर जरूर परिवर्तन आने के बाद हमारे स्व परिवर्तन से ये विश्व भी परिवर्तन हो जाता है। ओम शांति।
अभी मंच पर आएंगी झापा नेपाल से राजेंद्र पोरवाल जी, मेयर नगर पालिका नेपाल के हैं, पशुपति आध्यात्मिक विद्यालय कनकाई नगर पालिका झापा, और उनकी पुत्री भी है उद्रेती, वो भी आ जाएंगी। शांति देवी शिवकोटी उपाध्यक्ष बहुदर्शी नगर पालिका झापा नेपाल से, मंजू बहन भूतपूर्व मेयर, आप भी मंच पर आएंगे। भानु राजवंशी जी और संतोष दीदी जी को आप सम्मानित करना चाहते हैं। कृष्णा बहन राजवंशी नेपाल, वो पहले से ही आए थे अभी सेंटर की बहन अशोका दीदी जी को। नेपाल का पशुपतिनाथ टेम्पल जो है वो स्मृति चिन्ह दे रहे हैं। अन्य सभी मंच पर आए थे इसीलिए बहन कह रही है, आप सभी के लिए भी धन्यवाद है। अब मैं निवेदन करती हूँ कि आज के विषय का हम सभी को लाभान्वित कराएंगे आशा बहन दिल्ली कानपुर से। विषय है समाज, अध्यात्म एवं मूल्य। आशा बहन के जीवन की जो आशाएं भगवान ने पूर्ण की, हम सबकी भी आशा भगवान पूर्ण करने के लिए आए हुए हैं। जन्म जन्मांतर की सबकी आशय प्रभु मिलन की, तो उन्होंने प्रभु मिलन को जीवन में अनुभव करते हुए ईश्वरीय संदेश देने की सेवा समाज सेवा प्रभाग के द्वारा आप कर रहे हैं। अनेकानेक अभियान निकले समाज सेवा प्रभाग में, उसका भी आपने नेतृत्व किया है, जिसमें सामाजिक कुरीतियां मिटाने, व्यसन मुक्ति, साथ ही साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ऐसे अभियान भी आपने बहुत सुचारू रूप से चलाए हैं। मैं निवेदन करूंगी आशा बहन जी से कि जिनके लिए यही बात कहा जाता, मुस्कुराहट का जो हीरा है जो सुंदरता को बढ़ाता है, कहते हैं हर किसी पहने ये बिना खरीदे पहन सकते हैं, अगर ये गिर जाए और किसी के हाथ में आ जाए तो उसके जीवन भी धन्य धन्य होती है। तो आओ सभी भाई बहने, वो कहते हैं सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आशा बहन जी खानपुर। हम सभी के बीच से हमारे सम्माननीय पूजनीय, हम सभी को उमंग उत्साह में रखने वाले, सदा सर्व को ब्लेसिंग दे, सबका जीवन ऊंचा उठाने वाले संतोषी माँ देवी, हम सबके बीच से आशीर्वाद देकर के प्रस्थान कर रहे हैं, क्योंकि शांतिवन में बहुत सारी ब्रह्मकुमारी बहनें जो 31 वर्ष से समर्पित रूप से जीवन जी रहे हैं, सेंटर संभाल रहे हैं, उन बहनों से मिलने का भी आपका समय दिया हुआ है। तो हम सभी के बीच से पूजनीय दीदी जी प्रस्थान करते हैं। आपने दीदी जी हम सभी को बहुत बहुत समय दिया और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है, शुक्रगुजार है आशा बहन जी।
ओम शांति। मंच पर आसीन परम श्रद्धेय परम पूजनीय वरदानी मूरत सुदेश दीदी जी, आप ज्ञान सरोवर कैंपस के डायरेक्टर और जर्मनी में आपने अपनी बहुत सारी सेवाएं दी वहां की डायरेक्टर, और समाज सेवा प्रभाग की अध्यक्षा आदरणीय संतोष दीदी जी, और मंच पर अन्य सभी भाई बहने, उनकी ही कुशल भुजाएं, उनके सहयोगी, उनके राइट हैंड्स, और इस सभा में उपस्थित ऐसे विशेष गण माननीय अतिथि, ऐसे बच्चे जिन्हें समाज से, परमात्मा से, आध्यात्मिकता से बहुत प्रेम है। तो हम सभी मंच आसीन वालों का और सभा में आप सभी जो बैठे हैं, सभी तालियां बजा करके एक बार अपने आप को अलर्ट कर लेंगे। हम सभी बहुत सारी बातों को बहुत ही गहराई से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। जब व्यक्ति मार्केट जाता है बहुत सारी वैरायटी चीजों को देखकर चूज नहीं कर पाता क्या अच्छा है क्या मैं ले लूं। उस समय दिखाई देता ये भी ठीक है वो भी ठीक है, और कभी कभी लगता है शायद ये भी मेरे काम का नहीं है और वो भी मेरे काम का नहीं है, लेकिन फिर भी हम कुछ भी उसमें से जो ले लेते हैं, खाली हाथ तो नहीं आते मार्केट गए तो, और जब घर में आते हैं तब हमें वही चीज सबसे ज्यादा प्रिय लगती है कि मैंने जो निर्णय लिया, मैंने जो चीज चूज की वो बहुत अच्छी है, मेरे बहुत काम की है। वैसे ही ज्ञान सरोवर के ज्ञान भंडार में इतनी सारी महान हस्तियां इतना हमें ज्ञान दे रही हैं, तो सुनते वक्त कभी कभी लगता है कि मालूम नहीं इतनी बड़ी बड़ी बातें हमें समझ में आ पाएंगी या नहीं, हमारे लिए उपयोगी हैं या नहीं। लेकिन सच मानिए, जब आप घर पहुंचेंगे तो यहां का हर दृश्य, हर नजारा, हर सुनाई गई बात, यहां पर की गई लेन देन, यहां पर प्राप्त किया भोजन, यहां की प्रकृति, सब आपको बार बार यहां की ओर आकर्षित करती रहेंगी और आपको लगेगा कि मैंने जीवन के यही क्षण सफल किए हैं। हम सभी जिस समाज में रह रहे हैं, सभी बहुत बहुत फास्ट हो गया है, हर चीज बहुत फास्ट, फास्ट फूड खाने की प्रथा बच्चों में बढ़ रही है, पर फास्ट फूड और फास्ट डेथ भी हो रही है। फास्ट थिंकिंग है, बहुत ज्यादा हम सोचते हैं, बहुत फास्ट सोचते हैं, लेकिन फास्ट डिप्रेशन के पेशेंट भी बढ़ रहे हैं। फास्ट रिश्ते हो जाते हैं, गूगल से ही रिश्ते हो जाया करते हैं, लेकिन फास्ट तलाक भी हो जाते हैं। सब कुछ फास्ट, तनाव, दुख, अशांति, रोग, यहां तक जिन रोगों के लिए हम ये सुना करते थे कि बुढ़ापे में होते हैं, लेकिन आज वो बचपन में दिखाई देते हैं। बालों का सफेद होना, दांतों का गिर जाना, हार्ट की प्रॉब्लम्स हो जाना, अन्य अनेक प्रकार के बड़े बड़े रोग वो बचपन में ही हो रहे हैं, अर्थात सब कुछ फास्ट हो रहा है। ऐसे समाज, ऐसे टाइम पर हम कल से इस बात को सुन रहे हैं, एक गुजरा जमाना, पिछला जमाना, जिसकी बहुत सारी विशेषताएं हमने भिन्न भिन्न वक्ताओं से सुनी। किसी ने ये कहा कि ऐसा समाज था जिसको हम यदा कदा याद करते हैं, कि जहां नर श्री नारायण जैसा था और नारी श्री लक्ष्मी जैसी थी, जहां व्यक्ति के अंदर मूल्य थे, हर कार्य को बड़ा तसल्ली से किया जाता था, जहां शांति, धीरज, प्रेम, मधुरता, नम्रता, ये सभी गुण हर मानव में थे, उस मानव को हम देव मानव कहा करते थे, देवता कहा करते थे। वो आदि देव मानव आदि सृष्टि, कोई भी चीज जो प्रारंभ होती है वो हमेशा बहुत अच्छी होती है। जैसे व्यक्ति का बचपन, बचपन में बड़ा ही निश्चल प्रेम होता है, बहुत अच्छी भावनाएं होती हैं, निर्मल प्यार होता है, नया जीवन है, नई शुरुआत है। यदि कोई कपड़ा मिल कपड़ा बनाएगी, क्वालिटी में अंतर हो सकता है लेकिन कपड़ा वो नया ही बनाती है। और यदि कोई बहन भोजन रोटी बनाती है तो ताजी ही रोटी बनाती है, कभी बासी नहीं बनाती, वो रखने से बासी हो जाती है लेकिन बनाई ताजी जाती है। भगवान ने भी जो सृष्टि बनाई थी वो एकदम फ्रेश थी, सर्वगुण संपन्न थी। जहां व्यक्ति के अंदर भी मूल्य थे, जहां साधन से भी हम समृद्ध थे, सब कुछ प्राप्त था। ऐसे समाज को हम याद करके केवल खुश होते हैं और अपनी खुशी के शब्द भिन्न भिन्न प्रकार से बयान किया करते हैं। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम खुश होकर कह देते हैं स्वर्ग पधारा, चलो यहां के दुखों से चला गया, स्वर्ग चला गया। जबकि स्वर्ग जाता नहीं है, क्योंकि यदि कर्म नर्क में किए हैं तो स्वर्ग में कैसे जाएंगे। अब उस समाज को हम याद कर रहे हैं, एक वो भी था जमाना और आज का ये फास्ट ये भी एक जमाना। ऐसे जमाने में आज के तकनीकी युग में व्यक्ति अंतरिक्ष तक पहुंचाए लेकिन अपने घर में अपने साथ में बैठे हुए अपने बच्चों से अपने समीप के संबंधियों से बात करना व्यक्ति भूलता जा रहा है। कितना बदलाव आ गया आज और जो कल था। लेकिन ये हमेशा में याद रखना चाहिए, समय परिवर्तनशील होता है, हर रात के बाद फिर सवेरा आता है और हर कलयुग के बाद फिर सत्युग का सवेरा आएगा। आप सभी को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम उसी स्वर्णिम समाज की ओर कदम रख रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, उस स्वर्णिम समाज में एंट्री किसकी होगी, कौन जा सकेगा ऐसे समाज में। समाज बदलेगा, स्वर्ग इस धरा पर आएगा, ये सत्य है। परंतु उस स्वर्णिम समाज में जा कौन सकेगा। यदि किसी ने मेडिकल पढ़ाई पढ़ी है, मेडिकल लाइन से है, तो वो डॉक्टर बन सकता है। इंजीनियरिंग पढ़ाई पढ़ी है तो इंजीनियर बन सकता है। देवता बनने की पढ़ाई, ये रूहानी ये ईश्वरीय पढ़ाई जिसने पढ़ी है वही देवता बन सकता है और उसी की एंट्री हो सकेगी। आप सभी अपने लिए बहुत खुशी और गर्व अनुभव कर सकते हैं, परमात्मा ने आप सभी को स्वर्ग में जाने की टिकट दे दी है, क्योंकि आप माउंट आबू पहुंच गए हैं। अब ऐसे समाज में जाने के लिए यहां आना ये बहुत सौभाग्य की बात है, परंतु ये पर्याप्त नहीं है। उसके लिए हमें चाहिए स्पिरिचुअल पर्सनालिटी, और दूसरी चीज वैल्यू बेस्ड लाइफ, हमारा आध्यात्मिक व्यक्तित्व हो और हमारा जीवन मूल्यनिष्ठ हो। अब ये आध्यात्मिकता क्या चीज है? सार में कहेंगे अपने आप को जानना, अपने आप को आत्मा समझना, आत्मा में छिपी हुई शक्तियों को पहचानना, उन्हें उभारना, और आत्मा समझ के हर मानव से व्यवहार करना, भाईचारे का व्यवहार करना, परमात्मा को जानना, परमात्मा की शक्तियों को जानना कि वे ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, सुख शांति आनंद के सागर हैं। उस परमात्मा से अपना संबंध जोड़ना, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, उसके अधिकारी हैं। और जो परमात्मा से हम प्राप्त करेंगे वो हम समाज को दें, अर्थात कर्मों द्वारा समाज को हम सुख दें, किसी को भी दुख न दें, ये आध्यात्मिकता सिखाती है। आध्यात्मिकता परिवारों को तोड़ना नहीं सिखाती, जोड़ना सिखाती है, संजोना सिखाती है। आध्यात्मिकता ये सिखा रही है यदि परिवारों में किसी एक व्यक्ति का स्वभाव गर्म मिजाज का है, क्रोधित व जल्दी हो जाता है, या वो व्यसनी है, या अन्य किसी प्रकार का बुरा संस्कार उसके अंदर है, तो आध्यात्मिकता ये सिखाती है कि आप प्रेम से, शांति से उसे व्यवहार करें। भले सामने वाला हमें प्यार न भी दे, पर फिर भी हम उसे प्यार दें। कहा जाता है शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, यदि शांत रहकर सहनशील बनकर भी हमारे परिवारों की शांति बनी रहती है उसको भी सस्ता समझिए। यह है आध्यात्मिकता। उन वैल्यूज को हम अपनी लाइफ में लाएं। यूं तो हम सभी हर संबंध में वैल्यूज की डिमांड किया करते हैं। घरों में हम पाते हैं कि एक माँ ये चाहती है कि उसका बच्चा आज्ञाकारी हो, और बच्चा चाहता है कि उसके माता पिता प्रेम के दाता हों, वो कुछ भी मांगे वो देते जाएं। एक पति चाहता है उसकी पत्नी वफादार हो, और पत्नी चाहती है कि उसका पति समझदार हो, ईमानदार हो, कोई भी बात उसे छिपाए नहीं, उसका हर प्रकार का ध्यान रखे। यहां तक हमारे जो पड़ोसी होते हैं उनसे भी हम ये मांग करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि वो सुख दुख में हमारा साथ दें, ऐसे पड़ोसियों। हर फील्ड में, हर घर में, हर संबंध में हम वैल्यूज की मांग किया करते हैं। इसे क्या समझ में आ रहा है कि मैं स्वयं कभी एक बेटी के रूप में हूं, कभी एक पत्नी के रूप में हूं, कभी एक बहन के रूप में हूं, कभी एक मां के रूप में हूं, कभी एक पड़ोसी के रूप में हूं, तो सारे गुण जो मैं कामना दूसरों से कर रही हूं वो सारे गुण मुझे अपने में धारण करने हैं। तो हमें समझना ये है कि सर्वगुण संपन्न हमने ही बनना है, तब समाज बदलेगा, तब मानव देव मानव बन जाएगा। समाज की आप सभी सेवा कर रहे हैं, लेकिन निवेदन यहां पर मंच से यही किया जा रहा है कि आप अपने जीवन को मूल्यों से सजा लें, ताकि आप जिनकी सेवा के निमित्त बने, आपके कहने का उन पर प्रभाव पड़े, तब ऐसा समाज आ जाए जहां न कोई गरीब हो, न कोई भूखा हो, न कोई हॉस्पिटल हो, न कोई कोर्ट हो, न कोई डॉक्टर हो। ऐसा समाज बनेगा। हम सभी को मिल करके ऐसे समाज का निर्माण करना है। तो हम सभी मिल करके आज कुछ प्रतिज्ञाएं करेंगे कि हमने इतना जो सब सुना अच्छा भी लग रहा है, परंतु हमारा अपने लिए एक्शन प्लान क्या होगा, हम क्या करेंगे घर जाकर। तो सभी से निवेदन है कि यदि अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और हाथ अपना राइट हैंड आगे करेंगे, जिस प्रकार से हम प्रतिज्ञा किया करते हैं, मंच आसीन बैठे रहेंगे भले, पर हाथ जरूर आगे कर लेंगे। सभी खड़े हो जाएंगे प्लीज। तो जो जो हम बोलेंगे आप सभी भी रिपीट कीजिएगा और अपने मन में उस बात को दोहराइएगा, क्योंकि मन बहुत जल्दी से एक बात को नहीं मानता, बहुत बार उसे पढ़ाना पड़ता है, और जब मान लेता है तो आपका साथी बन जाता है। तो हम स्वयं को बोलेंगे आप सभी, हम स्वयं को दिव्य बिंदु आत्मा समझेंगे तथा सभी को आत्मा अपना भाई समझ सबके गुणों को देखेंगे, सबसे प्यार का व्यवहार करेंगे, हम स्व उन्नति के लिए प्रतिदिन प्रातः काल राजयोग मेडिटेशन करेंगे, स्वयं को सशक्त व सक्षम बनाएंगे, हम अपने कार्य क्षेत्र पर रहते हुए कर्म योगी बन कार्य करेंगे, सभी की निस्वार्थ भाव से रहम भाव से सेवा करेंगे, लेने की अपेक्षा छोड़ दाता के बच्चे बन सभी को सदा देते रहेंगे, विपरीत परिस्थिति में भी शांति संयम खुशी को बनाए रखेंगे, अर्थात हर हाल में राजी रहेंगे, प्रकृति व पर्यावरण की रक्षा करेंगे, शुभ भावना शुभ कामना से समाज को सुखमय बनाएंगे। अतः हम बदलेंगे, समाज बदलेगा, हम सुधरेंगे, स्वर्णिम समाज बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं प्रतिज्ञाओं को हर रोज अवश्य दोहराइए और वैसा करने का यत्न कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद।
मैंने आशा बहन के परिचय में कहा था कि वो बहुत अभियान चलाए, तो अनुभवी मूर्त थे, इसीलिए आपको भी प्रतिज्ञा कराकर दृढ़ता में लाया। तो आप इस प्रतिज्ञा को याद कीजिए, दृढ़ संकल्प के साथ चलिए, सफलता आपको मिलेगी। आज के हमारे सम्माननीय अतिथि कीर्ति बहन जी चिंतामणि जी हैं। आपका नाम ही कितना कीर्तिमान है, चिंतामणि, सबकी चिंताओं को दूर करने वाली और सबको सहारा देने वाली ऐसी महान विभूति हम सभी के बीच में है। आप जेल सुप्रिटेंडेंट है, पहली पोस्टिंग आपकी 2012 में एरवड़ा पूना जेल में हुई थी, जो प्रसिद्ध जेल है। उसके बाद नागपुर, यवतमाल और वर्तमान समय 8 महीने से आप अमरावती कारागृह में अपनी सेवाएं दे रहे। 60 क्वार्टर निर्माण करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा आपको पुरस्कृत किया गया है। ये बड़ी ऊंचा काम माना जाता है, जो क्वार्टर्स बनाए वो आप ही सुनाएंगे। और अभी जैसे जेल है, जेल में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि उसका सुधार करना बहुत जरूरी होता है, तो आपके प्रयास से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जेल के सभी कार्य अच्छी तरह से कराने के लिए 32 करोड़ रुपए की निधि जो है वो आपको दिलवाई है। अमरावती कारागृह में आप कार्य शुरू भी किया है। संजय दत्त जब एरवड़ा सभागृह में, वो कारागृह में थे, तभी भी आप वहां अधीक्षक के रूप में पोस्टिंग पर थे और बहुत सारी सेवाएं करने का सदा आपका उमंग उत्साह रहता है। यही तो कहते हैं कि जीवन में आध्यात्मिकता की अगर शक्ति होती है तो वो नारी नहीं, वो शिव शक्ति कहलाई जाती है। ऐसे नेगेटिव वातावरण में रहने के बाद अनेकानेक लोग अपनी चिंताएं सदैव सुनाते रहते हैं और वो सुनने के बावजूद भी अपने पर्सनालिटी को आप डेवलप्ड करते रहे, ये शिवजी की कृपा आपने अनुभव की है। शांति सद्भावना सदैव समाज में बनी रहे उसके लिए आप प्रयासरत रहते हैं और सामाजिक मूल्यों को जीवन में अपनाना ये आपके जीवन का लक्ष्य है। इसीलिए जैसे कहते सोशल शब्द है, उसका अर्थ ही होता है एस फॉर सिंपैथी, ओ फॉर ऑप्टिमिस्ट, सी फॉर क्लीननेस, आई फॉर इंटीग्रिटी, एल फॉर लव। ये आपके जीवन से सदा धारा बहती रहती है। ऐसे मूल्यों को जीवन में धारण करते हुए, शिव परमात्मा पर निश्चय रखते हुए आपके दिल अंदर से निकलता है। कहते हैं कि शिव की तस्वीर लगाओ मन के कक्ष में, कहते हैं शिव की तस्वीर लगाओ मन के कक्ष में, फिर आप अनुभव कीजिए कैसे सारे फैसले होते हैं आपके कक्ष में, आपके कक्ष में। तो मैं कीर्ति बहन से अनुरोध करती हूँ, आप अपने अनुभव से हम सभी को शुभकामनाएं शुभ भावना दें। कीर्ति बहन।
ओम शांति। धन्यवाद दीदी जी, मंच पर उपस्थित सम्माननीय आदरणीय पूजनीय सर्व बहन जी और भाई जी, आज मैं ज्ञान सरोवर में इस पवित्र मंच पर आकर आपसे दो शब्द बोल रही हूँ। इसके लिए मैं सही में हमारे अमरावती की सीता दीदी का बहुत बहुत आभार मानती हूँ, जिन्होंने मुझे इस स्वर्ग तुल्य ज्ञान सरोवर में आने का एक सौभाग्य दिया है। सच में अध्यात्म का जब साथ होता है ना, तब हर काम सुलभ हो जाता है और इसकी अनुभूति भी मुझे बहुत बार आई है। और इस मंच पर जब मैं उपस्थित हुई तभी इसका मुझे इतना बड़ा सबूत मिला है कि सचमुच मैं पवित्र आत्मा हूँ, इसलिए मुझे आपके समक्ष यहाँ दो शब्द बोलने का चांस मिला है। मुझे कारागृह सेवा में आने से पहले मैं सही कहती हूँ कि मैं शिवानी दीदी का लेक्चर सुन के बहुत ही भावुक होती थी। जब भी टीवी पे आता था मुझे बहुत अच्छा लगता था कि ये पवित्र आत्मा है और ऐसे आत्मा से कब हमारी मुलाकात होगी। तो उसके बाद मैं, मेरे पति मुझसे शादी करने से पहले ओम शांति में ही थे, तो उसके बाद कुछ सिचुएशन ऐसी आई कि उन्होंने शादी कर ली और हो सकता है वही बीज मुझ में तभी गिरे हैं। और शादी के बाद 10 साल बाद उनका ऑफ हो गया है। और उसके बाद मैंने एक अपना खुद का एक जो होता है स्ट्रगल, वो अनुभव किया है। उसके बाद मुझे लगा है कि जब हम सच्चे दिल से कुछ संकल्प करते हैं, जब भी मैं लेक्चर सुनती हूँ बाबा के, वो कि संकल्प से सिद्धि, मैंने बहुत से लेक्चर में भी ये सुना है शिवानी दीदी के, संकल्प से सिद्धि मिलती है। तो मैं अपना कर्म शुद्धता से और प्रेमता से हमेशा करती आई हूँ। जब मैं इस कारागृह सेवा में आई 2012 से, तब मैंने देखा कि इतनी निगेटिव एनर्जी वहां होती है और उस निगेटिव एनर्जी में अगर हम भी निगेटिवली काम करेंगे तो बहुत ही मुश्किल है। उसके लिए हमारे लिए भी ये जरूरी है कि हम कुछ ऐसा सोचें या फिर ऐसा काम करें जिससे हमें दुआएं मिले। मैं वहां जब काम करती थी तो मुझे उस काम का तो सैलरी मिलती है, मैं 8 घंटे 9 घंटे जो भी, वैसा तो 24 आवर्स हम बिजी होते तो उसकी हमें सैलरी मिलती। इसके अलावा भी हमें कुछ करना है तो क्या करना है, तो मैंने ये सोचा कि इसके अलावा भी हम कुछ ऐसे बंदियों की सुधारना और पुनर्वसन हो, इसका हम अलग अलग अगर प्रोग्राम लेंगे कारागृह में तो बंदियों में भी वो पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो ये सोच के जब मैंने एज ए सुपरिटेंडेंट यवतमाल में काम किया था, तो मेरी एक बचपन की फ्रेंड, वो डीओटी है यहाँ पे समर्पित है, तो वो मुझे वहाँ पे यवतमाल में मिली थी। तो वो बोलती थी तू सेंटर आ, तू कोर्स कर, लेकिन मेरा बिजी शेड्यूल था तो वो पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन मैं उनके सेंटर में 2-3 बार वहाँ मंगला दीदी ने मुझे इन्वाइट किया था शिवरात्रि के प्रोग्राम के लिए और बहुत से वहाँ पे कार्यक्रम होते थे, तो मुझे वहां जाके बहुत ही प्रसन्नता फील होती थी। उसके बाद जब मैं हमेशा उनको भी बोलती थी कि मुझे शिवानी दीदी बहुत अच्छी लगे, तो आप बिलीव नहीं कर सकते कि उस दौर पे जब मैं यवतमाल में थी तो शिवानी दीदी का प्रोग्राम वहां अरेंज हुआ, अभी जस्ट ये 2 साल पहले। तो मुझे उनसे करीब से दीदी से बात करना और उनको मिलना हुआ, तो उससे मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा। और मैंने उनसे कहा भी कि आपके संकल्प से सिद्धि जो वाक्य है ये यहाँ पे मुझे उसका अनुभव आया है कि आप, मैंने सोचा था, संकल्प किया था कि आपसे मिलूं तो वो सिद्ध हो गया। और मैं जेल में भी काम करती हूँ तो मुझे ऐसी एक पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत है जो यहाँ पे काम करने का थोड़ा मुझे बल मिले। तो उन्होंने वही कहा कि बस दुआएं लेते जाओ। तो दुआएं लेना मीन्स हम अपने काम से कुछ अलग करना है। तो फिर कर्मयोगी जो शब्द मैं यहाँ बार बार सुन रही हूँ, तो मुझे लगता है वही कर्मयोग है जो अपने काम के अलावा जो हम काम करते हैं वो सही अर्थ में सेवा है। जैसे मैंने यवतमाल में फिर कोशिश की कि हमारे क्वार्टर इतने गंदे थे, मतलब हमारे स्टाफ जो है 200-300 का, तो वहां पे डिस्ट्रिक्ट जेल था तो वहां 60 का स्टाफ था, तो उसे सब गिरे हुए मकान थे। तो मैंने कोशिश की कि हो सकता है कि अपन कोशिश करेंगे तो कुछ होगा। तो मैंने कलेक्टर सर से, पालक मंत्री थे वहां पे, वहां से थोड़ा सा एक अपने पावर का जो उपयोग होता है वो करना शुरू कर दिया, पत्र व्यवहार किया, तो मुझे उसमें यश आ गया। उन्होंने सोचा कि ये इतना काम कर रहे, तो उन्होंने कभी बिलीव नहीं कर सकते आपकी 12 कोटी निधि एक छोटे से कारागृह को मिलेगा। तो कलेक्टर सर और वहां के पालक मंत्री ने मुझे वो 12 कोटी निधि दिया और उससे 60 क्वार्टर्स इतने एडवांस हमारे स्टाफ के लिए बांधे हैं, और वो जेल भी बहुत पुराना था, उसका गेट सब टूटा था, ये था, तो वो भी मैंने पूरा मतलब वो बाबा की कृपा है कि मुझे वो काम करने का संकल्प दिया और वो सिद्ध हो गया। उससे मुझे इतनी खुशी हुई कि हर कोई उसमें रहने जाता है तो वो बोलते हैं कितना अच्छा मैडम तुमने काम किया, मैं बोलती हूँ मैंने नहीं किया, मुझे वो भगवान ने वो प्रेरणा दी कि तुम्हारे लिए मैं कुछ करूँ। इससे मुझे कुछ आर्थिक तो फायदा नहीं हुआ, लेकिन वो घर में जो भी रहने जाता है वो मुझे दुआ मिलती है, तो वो दुआ से ही मैं ये इतना जो निगेटिव वातावरण होता है वहां पे मैं काम कर रही हूँ। उसके बाद अभी मेरी 8 महीने पहले यहाँ पे ट्रांसफर होगी अमरावती जेल में, तो वहां आने के 6 महीने बाद अब दीदी का तो मुझसे कुछ सीता दीदी का तो कुछ पहचान नहीं थी, लेकिन अचानक उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि दीदी आप हमारे प्रोग्राम के लिए आएंगे, तो मुझे मैंने सोचा मैंने तो कभी सेंटर गई नहीं हूं, फिर भी इन्होंने मुझे कैसे बोला। फिर मुझे ऐसे ही फील हुआ कि शायद मेरा कर्म यहाँ पे भी कुछ बाकी है, तो सीता दीदी ने मुझे अमरावती के प्रभात टॉकीज में एक सोशल प्रभात की ओर से 10 वहां पे शो दिखाए थे, बाबा का फिल्म थी वो द लाइट, तो उसमें उन्होंने बाहर से बड़े बड़े वीआईपी भी बुलाए थे, उस वीआईपी में मुझे भी उन्होंने सम्मान के साथ आमंत्रित किया, सबका उन्होंने सम्मान किया और सब वीआईपी लोगों ने भी दीदी का सम्मान किया, और इस अनेक उसमें समाज सेवी भी आए थे, और ये उस समाज सेवी ने भी दीदी का बहुत सम्मान किया। ये कार्यक्रम वहां पे बहुत ये शो जो था ये स्पेशली उसके बहुत से प्रयोग वहां पे हुए, और हमने भी देखे, मैंने भी अपने जेल वालों को भी बोला कि वो शो देखो। उसके बाद मुझे समझ आया कि ये प्रजापिता ब्रह्म कुमारी क्या है और शिव बाबा क्या है, तो उसके बाद मुझे सचमुच मैं दीदी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि इन्होंने मुझे सेवा का चांस दिया। उन्होंने वहां के जो स्पेशल सभी समाज सेवी और अंध विद्यालय के लिए भी रखा था, उसको भी वहां पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, और आपको बताती हूँ कि 15 साल वो जेल में आपका कोर्स जो चलता है वो चल रहा था, लेकिन कोविड की वजह से सब बंद हो गया था, और वो पावर सुपरिटेंडेंट से निकाल लिए थे, डीआईजी या एडीजी उनके हाथ में वो पावर थी कि अगर कहाँ कारागृह में अगर कोई प्रोग्राम लेना है तो उनकी परमिशन चाहिए, लेकिन आप माने मतलब बिलीव नहीं करेंगे कि उसके बाद मैंने उनसे दीदी से कहा कि ये प्रोग्राम जेल में शुरू करना है तो आप मुझे लेटर दो, मैं परमिशन लूँ, तो दीदी ने मुझे लेटर दिया। एज ए सुपरिटेंडेंट मैंने उनको कहा कि सिर्फ अमरावती जेल मत डालो, महाराष्ट्र डालो, हो सकता है आप बाबा ये काम कर देंगे, और 2 ही दिन में हमको परमिशन मिली कि पूरे महाराष्ट्र में वो कार्यक्रम लो, और आज वो कार्यक्रम भी हमारे बंदी बांधवों के लिए शुरू है, और वीक में 4 दिन भाई लोग बहन लोग दीदी लोग आते हैं और बंदियों को बाबा की मुरली सुनाते हैं और ये महत्व बताते हैं, तो ये इतनी बड़ी सेवा का चांस मुझे सचमुच मिला है, ये मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ, और सीता दीदी ने मुझे यहाँ आके बड़े बड़े दीदियों से मुलाकात भाई से जो मुलाकात मिली उसका जो आनंद है मैं बयां नहीं कर सकती। यहाँ आने के बाद भी मुझे स्वर्ग तुल्य लगा है, सच में शांति और पवित्रता जो अनुभूति होती है वो मुझे यहाँ मिली, यहाँ बुलाए मुझे सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से आपके आभारी हूँ, धन्यवाद। ओम शांति, जय हिंद, जय महाराज।
बहुत बहुत धन्यवाद शिव शक्ति स्वरूपा का। अब मैं निवेदन करती हूँ मंच पर डॉक्टर विपुल जी और हरीश चमोली जी आएंगे, आपका स्वागत सत्कार करेंगे। हमारे उपाध्यक्ष प्रेम भाई जी, आपसे अनुरोध है कि आप मंच पर आ जाए। अब हम जा रहे हैं, आज तो बड़ा सौभाग्य का दिन है और भाग्य तो बढ़ता ही जाना चाहिए, कहते हैं सौभाग्य तो क्या परंतु पदमा पदम भाग्य हो,
आपसे निवेदन रहेगा कि आप अपनी करतल ध्वनि का साथ देंगे डॉक्टर विपुल जी और हरीश चमोली जी जो हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं, सम्मानीय अतिथि तीरथ सिंह रावत जी आपके साथ वो पधारे हैं। बाबा के घर में हरेक आत्मा को वो स्नेह ईश्वरीय प्यार ईश्वर के दरबार का वो सम्मान प्राप्त होता है। भगवान के घर का ये सम्मान उपहार आपको मिल रहा। अभी आप हमारे आदरणीय पूजनीय राजयोगिनी सुदेश दीदी जी के द्वारा प्रसाद भी लेंगे। धन्यवाद। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शान कहे, भगवान ने जिन पर ज्ञान का कलश रखा ऐसी बहने, और भगवान ने जिनमें विश्वास रखा और उस विश्वास को पूर्ण किया ऐसी महान विभूति जो दिल्ली से निकलकर भारत के अनेक स्थानों पर सेवा करते करते ये पवित्र गंगा कब वो लंदन पहुंची, लंदन से ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका यूं कहे विश्व के पांचों महाद्वीप जिन्होंने अपने चरण कमल रखते रखते आध्यात्मिकता का प्रचार और प्रसार करते पूरे जीवन स्व के लिए परमात्म ब्लेसिंग और सर्व के लिए वो परमात्मा द्वारा प्राप्त ज्ञान वो दिव्य गुण वो शक्तियों को बिखारते वर्तमान समय ज्ञान सरोवर में वो पवित्र गंगा को भगवान ने विराजित किया। जिनके जीवन में न कोई नाम न कोई मान न कोई शान, लेकिन आज उनको देखते ही दिल को वो शक्ति प्राप्त होती है कि जिसको कहा जाता कि वो आध्यात्मिकता की प्रणेता है। प्यारी बाबा की दुल्हारी संगम पर अवतारी दिव्य मुस्कान जिनकी न्यारी ईश्वर के लगन में मगन रहने वाली ऐसे हमारी आदरणीय सुदेश दीदी जी को हम सबका शत शत अभिवादन अभिनंदन। दीदी जी कोटि कोटि आपको प्रणाम। इस ज्ञान सरोवर से मिलती है ज्ञान की शक्ति शांति की शक्ति निराली। गुरु का घर ये ज्ञान सरोवर, और ज्ञान सरोवर में परम टीचर का ये दर जहां मिलती है आध्यात्मिक शक्ति। इस मधुबन में मिलता है परमात्म प्यार और दुलार। परम पिता का ये घर भी है तो ये एक यूनिवर्सिटी भी है। दिल बार बार यही कहता है मस्त मौलाई मस्ती में चले अब हर एक इंसान अपनी हस्ती में। जीवन बनाए तो बनाए ऐसी जो सारी दुनिया आपको देखकर ईश्वर को स्मरण करे ईश्वर को स्मरण करे। ऐसे आदरणीय राजयोगिनी सुदेश दीदी जी संयुक्त मुख्य प्रशासिका ब्रह्मा कुमारीज और वर्तमान समय ज्ञान सरोवर की सेवाएं तो संभाली रहे, लेकिन आज भी दीदी जी विदेश की सेवा का भार भी संभाल रहे हैं, और जर्मनी की सेवाएं दीदी जी ने विशेष रूप से की हुई है। ऐसे दीदी जी को मैं यही कहूंगी, दीदी जी आप शिव तपस्वी मूर्त पार्वती है। एक की लगन में मग्न रहने वाली सच्ची वो आप मीरा भी है। ज्ञान रत्नों से सजी सजाई मूर्त आप स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा भी है। अविनाशी विद्या दान कर संस्कारों को परिवर्तन कराने वाली श्वेत धवल वस्त्रधारी आप माता सरस्वती है। सर्व में उमंग उत्साह भरने वाली दीदी जी आप हमारी उमा भी है, उमा देवी जी है। सर्व की स्थूल सूक्ष्म पालना करने वाली अन्नदात्री अन्नपूर्णा सरस्वती देवी है, सरस्वती देवी है। आदरणीय दीदी जी से हम ब्लेसिंग सुनेंगे और जोरदार करतल ध्वनि के साथ दीदी जी का हम अभिवादन अभिनंदन और कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। ओम शांति,
ओम शांति, ओम शांति। मंच पर विराजमान सम्माननीय मेरे भाई तथा बहने, मेरे दाएं बाएं बैठे हुए विशेष आत्माएं, समाज की सेवा, विश्व की सेवा, स्वयं की सेवा पर तत्पर, ईश्वरीय सेवा की सेवा पर तत्पर, जिन्होंने अपना जीवन दिया है, और मेरे सामने बैठे हुए मुझे समाज के चैतन्य, जिन आत्माओं के अंदर आध्यात्मिकता की इच्छा है, आध्यात्मिकता की भावना है, आध्यात्मिकता की रुचि है, वही यहां उपस्थित हुए हैं। तो समाज में आध्यात्मिकता तो ऐसा ही लग रहा है जैसे कि परमात्मा ने अथवा इस बेहद के नाटक में ड्रामा ये कहें, बना बनाए खेल में जैसे परमात्म बगीचे के चुने हुए फूलों को, एक गुलदस्ते को हमारे पास यहां लाया है, जो भिन्न भिन्न विशेषताओं से, भिन्न भिन्न संस्थाओं से, भिन्न भिन्न कार्य स्थानों से यहां पर पहुंचे हैं। तो आपको कल से आज तक बहुत कुछ आध्यात्मिकता के बारे में सुनने को मिला है। अभी समय है, जो सुना है ऑफ कोर्स समझा भी जरूर होगा, क्योंकि आप समझने वाली आत्माएं समाज के समझदार व्यक्ति हैं अथवा समझदार मनुष्य आत्माएं, देव आत्माएं, जीव आत्माएं हैं, और समझने के साथ साथ चाहना तो पहले है, क्योंकि आप आए हैं, सुन रहे हैं, चाहना, सुनना, समझना, और फिर जीवन में उसको प्रैक्टिकल में करना, करने के बाद उसके रस का अनुभव होता है। वास्तव में मैं अपने जीवन के अनुभव की बात बताना चाहती हूं। मेरा, हम एक छोटे स्थान पर रहते थे और हमारा कॉलेज जिसमें मैं पढ़ती थी, लड़कियों का स्कूल बहुत छोटे 5 तक था, 5वीं क्लास तक, लड़कों का स्कूल इंटरमीडिएट जिसका था। तो क्योंकि पढ़ाई को ज्यादा पढ़ना है, हमारे घर में वह कुमारी हो या कुमार हो, एजुकेशन सबके लिए जरूरी थी। तो 5 किलोमीटर दूर स्कूल में जाना होता था मेरे भाइयों के साथ। 600 लड़के थे स्कूल में और हम सिर्फ 10 लड़कियां थी। रास्ते में हरिजनों की बस्ती थी, तो जब मैं वहां से पास करती थी, कुछ एरिया बड़ा अजीब सा एरिया था, इसीलिए पेरेंट्स अकेला नहीं भेजना चाहते थे, भाइयों के साथ ही इतना दूर कॉलेज में जा सकते थे, वो भी वहां के स्टूडेंट थे, इसलिए सहज हो गया। तो मुझे उनके जीवन को देखते हुए तरस पड़ता था, हृदय में दया उत्पन्न होती थी कि ये कैसा जीवन जी रहे हैं, आदतें कैसी, घर का वातावरण, यानी कोई जिस प्रकार भी ये कहें जिनको खराब आदतें पड़ जाती हैं, ऐसा संगठन भी आपस में उनका ऐसा हो जाता है जिसमें बुरी आदतों के कारण शराब पीना, व्यर्थ बातें करना, व्यर्थ वातावरण, उस वातावरण से पास करते हुए भी ऐसे लगता था जैसे कि कोई गर्म हवा इस एरिया में है। तो भावना यह होती थी, समाज सेवा की हृदय में भावना उत्पन्न हुई कि मैं समाज सेवक बनूंगी, पढ़ाई पढ़ के दिया पूरा करके बीटी करके फिर मैं समाज सेवा करूंगी, परंतु अभी से करनी चाहिए। तो उनको जो चाहिए, कभी कपड़े दिए, कभी गर्म कपड़े दिए, कभी कुछ और, उनको जो सहयोग हो चाहिए वो दे। पर थोड़े दिनों के बाद देखो तो कम्बल कहाँ चले गए, गर्म कपड़े जो दिए थे वो कहाँ चले गए, वो फिर से वही ठंडी में सुकड़ रहे हैं। फिर हमारी दादी ने कहा तुम इतना परेशान क्यों होती हो उनके लिए, वो तो देख के शराब पी लेते हैं, कोई अच्छा कर्म थोड़ा कर रही हो। पर मुझे भावना ये थी कि मुझे मदद करनी है, मुझे समाज सेवा करनी है। तो मेरी दादी ने कहा कि उनको सिर्फ रोटी तो चाहिए ना, अच्छा चलो वहाँ उस एरिया में खाना खिलाने के लिए भेज देंगे, वे भोजन भेज देंगे। बाई चांस क्या हुआ, उस समय एक व्यक्ति बुजुर्ग हमारी कॉलोनी में रोटी लेने के लिए आता था, उसका झोला रोटी से भर जाता था, हर एक घर से एक एक रोटी ली, दो दो रोटी मिली तो पूरी कॉलोनी से झोला भर जाता था। और वो भरे हुए झोले को खुद तो नहीं खाएगा, वो बेच देता था और बेच करके शराब पीता था। तो मुझे बड़ा दुख सा होता था कि ये क्या, हम इनको मदद करना चाहते हैं, खाना भी नहीं खाना चाहते, उसमें भी शराब के लिए, और फिर उस वातावरण में झगड़ा, उस वातावरण में किसी न किसी प्रकार के वातावरण ऐसा जिसमें अपने आप को भी कष्ट देवे, दूसरे को भी कष्ट देवे। तो हमारे फादर की ट्रांसफर फिर दिल्ली में हो गई, तो हमारी मासी मुझे रहना पड़ा, क्योंकि हमको थोड़ा समय के लिए हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल्स ने वहाँ की जो जिस स्कूल में मैं तीन क्लास तक पढ़ी थी, चार तक, मैंने स्टडी बहुत फास्ट की, लड़कों के स्कूल में जाने की वजह से एक एक साल में दो दो क्लासेस की थी, तो मैंने ऐसे जल्दी कर लिया। नेहरू राष्ट्रीय इंटर कॉलेज था वो गंगा के किनारे, तो मेरे प्रोफेसर ने कहा तुमको सोशल सेवा अच्छी लगती है, हमारी जो हेडमिस्ट्रेस है मिस मेहता उसकी शादी होने वाली है, अभी तुम तीन महीना फिर ये सेवा करो तो कन्याओं को थोड़ा अच्छी शिक्षा भी मिलेगी, मदद भी उनको होगी। तो मेरे को तीन महीना मेरी मदर के साथ वहाँ रहना पड़ा, और हमारी मासी हमारे फादर की ट्रांसफर हुई तो हमारे बाकी भाई बहनों के घर के सहयोग देने के लिए आके रही। जब हमारा तीन महीना वो सेवा का पूरा हुआ स्कूल का, तो हम आए तो मैंने अपनी मासी से एक दिन वॉक करते बात की, मन की बात कि मुझे बहुत भावना है मैं समाज सेवा करूं, समाज बहुत अच्छा होना चाहिए, समाज की शोभा जीवन की शोभा है, हर एक इंसान को कितनी चिंता, कितनी परेशानी, कितना दुख, कितनी हिंसा, कितना डर, इंसान होते हुए भी इंसान आराम से नहीं रह सकता, तो समाज सुधरना चाहिए। बेशक थोड़े व्यक्ति ऐसे हैं जिनका जीवन ठीक नहीं है, पर थोड़े से व्यक्ति भी अनेक आत्माओं को कितना कष्ट पहुंचाना चाहते। उन्होंने कहा कि तुम सोशल सर्विस करती हो, तुम स्पिरिचुअल सोशल वर्कर बनो। मैंने कहा स्पिरिचुअल सोशल वर्कर क्या होता है, उन्होंने कहा देखो तुम उनको जितना अगर पैसा देती हो, ब्लैंकेट देती हो, गर्म कपड़े देती हो, मदद करती हो, खाना भी देती हो, उससे उनका जीवन तो नहीं बदलता, उनके अंदर शक्ति नहीं है अपने जीवन को बदलने की। इसलिए आध्यात्मिक सेवा करो, स्पिरिचुअल सोशल वर्कर बनो। मैंने कहा ऐसा कोई स्थान है जहां स्पिरिचुअल सोशल वर्कर का कोई स्कूल अथवा इंस्टीट्यूशन हो? उसने, मेरी मासी ने कहा कि जिस बिल्डिंग में मैं रहती हूं उसके नीचे ही ब्रह्मा कुमारीज हैं। तो मैं देखती हूं कि लोग बड़े दुख के चेहरे से, चिंता से, करैक्टर ऐसा है जो अपने में होप नहीं है, ऐसे ऐसे व्यक्ति आते हैं, पर थोड़े दिनों के बाद उनका जीवन बदल जाता है, उनमें विश्वास उत्पन्न हो जाता है, उनमें सम्मान जागृत होता है, उनको रुचि होती है अपने जीवन को अच्छा बनाने की। तो मैंने कहा वो कैसे बन गए फिर? तो उन्होंने ये कहा कि देखो आप मदद करती हो, वो तो दुनिया में भी सब मदद करते हैं, रोटी देना है, जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करना है, समाज सेवा करने वाले बहुत हैं, पर आत्मा को सुख देने वाले, आत्मा को शांति और शक्ति देने वाले, जो जीवन को चलाने वाली शक्ति है, उसको शक्ति नहीं मिल रही। खाना जीवन चल रहा है समाज सेवा से, जीवन चल रहा है, पर जब तक आध्यात्मिक शक्ति नहीं है तो जीवन जीने का आनंद नहीं है, जीवन जीने का सुख नहीं है, हमेशा डर के अंदर है। तो ब्रह्मा कुमारियां आध्यात्मिक शिक्षा देती हैं, जिससे आत्मा के अंदर, क्योंकि शक्ति अनुभव करने वाली, जीवन का परिवर्तन करने वाली वो तो आत्मा है ना, शरीर को तो कुछ कॉन्शियस ही नहीं है, हम मनुष्य आत्मा कहलाते, मनुष्य आत्मा यानी ये शरीर ह्यूमन बॉडी में चेतन आत्मा है, और अनुभव हाथ पैरों को नहीं होता है, पैर टूट जाए तो पैर को नहीं पता कि मेरी टांग टूट गई है, दुख आत्मा को अनुभव हो रहा है, दर्द आत्मा को अनुभव है, भूख भी जो है शरीर को भूख नहीं लग रही है, भूख आत्मा को है। तो आदतें अच्छी या बुरी, स्वभाव आत्मा के अंदर है, तो संस्कार आत्मा को बदलने होंगे। इसलिए पहले पहचान होनी चाहिए कि बदलना किस चीज को है, मदद किसको चाहिए। मिसाल के तौर पर आप एक बर्तन में पानी डालना चाहते हैं, आप मटके में पानी डालना चाहते हैं या अमृत डालना चाहते हैं, और उसका ढक्कन अगर बंद है तो कितना भी आप उसमें अमृत डालो, पानी डालो, पैसा डालो, अंदर कुछ नहीं जाएगा। तो अभी आत्मिक ज्ञान न होने के कारण, देह के अभिमान होने के कारण मनुष्यात्माओं में फीलिंग ही खत्म हो गई है कि हम कोई किसी को दुख दे रहे हैं, और न केवल दुख दे रहे हैं परंतु मनुष्यों के अंदर दुख लेने का संस्कार भी बहुत है। ये फिर भी भावना अच्छी है कि किसी को दुख न दे, परंतु दुख लेना वो इतना स्वाभाविक हो गया है कि किसी ने कोई एक बात कही और वो बिल्कुल खराब बात थी, दुख देने वाली बात थी, बेकार की बात थी, किसी ने कही वो दिल में इतनी छप गई, मन के अंदर इतनी चोट लग गई, जो 6 महीने के बाद या 8 महीने के बाद भी वो पिंच कर रही है, या 8 साल या 10 साल के बाद भी वो दुख दे रही है। तो अभी आप सोचो, जो चीज गंदी थी, जो बेकार थी, जो फालतू थी, आपने अपने मन में अगर रखी, तो किचरा अपने मन में रखा तो कीड़े मकोड़े ही तो पैदा होंगे ना, गंदगी आपने क्यों रखी मन में? तो वो नेचुरली है। अब जो दुख देने वाली चीज बार बार अगर आपने उसको रिपीट किया तो वो दुख उतने ही बारी, किसी ने एक बारी दुख दिया और आपने 50 लोगों को वर्णन किया और 50 बार वर्णन किया, तो ऐसा ही है जैसे किसी ने एक बारी चाकू से आपको चीर लगाया, आपने उसी चाकू से 50 बार अपने आप को लगाया। और इतना दुख लेते गए तो आखिर कहा करेंगे, दुख पचा नहीं सकते तो दुख की उल्टी करते हैं। जो चीज नहीं पचती है तो आखिर तो वोमिट ही करेंगे ना। तो वातावरण खराब होता है तो सारे समाज में, आज सब समाज दुखी है, अशांत है, हर एक व्यक्ति परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं है। इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान यानी आत्मिक ज्ञान, और आत्मा को भी ये तो पता है हर एक को, आत्मा शब्द नया नहीं है। आत्मा तो शरीर छोड़ के चली गई, हम कहते हैं हे परमात्मा इनकी आत्मा को शांति का दान दो, हे परमात्मा इनकी आत्मा को शक्ति दो, इनको मुक्ति दो। तो हमने आत्मा तो कहा, परंतु वो आत्मा है क्या चीज? हमारा संबंध आत्मा से जिंदा होते कितना था? दूसरे व्यक्ति से, चाहे मेरा भाई है, चाहे बहन है, चाहे हस्बैंड है, चाहे माँ है, चाहे सास ससुर है, आत्मा का आत्मा से कितना रिश्ता है? आत्मा में वो जो शक्ति, शांति, ज्ञान, प्रेम, पवित्रता, दिव्यता, सत्यता, स्नेह, सद्भावना, कल्याण, रहम, क्षमा, ये आत्मा के लक्षण हैं। और अगर आत्मा अपने आप को आत्मा ही नहीं समझ रही है तो वो जो जल मिलना चाहिए उस बीज को जल नहीं मिल रहा है, अवेयरनेस नहीं है। बीज तो है, ये गुण सब चाहते हैं, परंतु वो फल फूल नहीं रहे हैं। क्यों? कि सूखे बीज को अगर आप 50 साल भी रखो सेफ रख करके, या 5 साल भी रखो, पानी नहीं देंगे, धरती नहीं मिलेगी तो उगेगा नहीं, वायुमंडल नहीं मिलेगा तो वो उगेगा नहीं, और उस बीज में से फल नहीं निकलेगा। तो हर एक चाहता है शांति हो, हर एक चाहता है सुख हो, हर एक चाहता है सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु, कोई भी किसी बात का दुख किसी को न होवे, कभी दुख ना हो। तो कभी सुख का अनुभव किया हुआ है तो दुख लेने का संस्कार बढ़ गया है, तो इतना ज्यादा दुख है जो सहन नहीं कर सकते, क्योंकि अपने आत्मा का द्वार नहीं खुला है, आत्मा का नेत्र नहीं खुला है। तो आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब है अपने आत्मा की जागृति, अपने आप को पहचानना और आत्मिक शक्ति को कंबाइंड रूप से जागृत करना। आप लोगों ने शायद आज आत्मा का ज्ञान सुना होगा, मैं इसके विस्तार में नहीं जाती हूँ। आत्मा क्या है? चैतन्य शक्ति है, चैतन्य ज्योति है। इसीलिए जब कोई शरीर छोड़ के जाता है तो कहते हैं लाइट इज गॉन, लाइफ इज गॉन। तो वह आत्मा जो लाइट थी, जिसकी यादगार में दीवा जगाते हैं, वो आत्मा ज्योति है, उसमें ज्ञान की ज्योति, शांति की ज्योति, प्रेम पवित्रता की लाइट है। तो अब वो आत्मिक स्थिति में, शरीर आत्मा छोड़ के गई तो दिल तो पड़ा है शरीर में, पर क्या चीज निकल गई? आत्मा क्या लेके गई साथ में? आत्मा निकल गई, दिल है, फीलिंग नहीं है, दिमाग है, सोच नहीं है, कर्म इंद्रियां हैं, चरित्र नहीं है। भाई व्यक्ति बड़ा अच्छा था, बड़ा भाववान था, बड़ा सहनशील था, बड़ा गुणवान था, वो विशेषताएं कहाँ चली गई? वो आत्मा अपने साथ संस्कार लेकर के गई। तो पहले तो ये समझना है कि मैं आत्मा, मुझे आत्मा में जो तीन शक्तियां हैं वो कंबाइंड काम करे, खाली मन की इच्छा नहीं। शरीर में मन का संकल्प है शुद्ध होवे, मन की भावना है समाज अच्छा हो, बुद्धि में निश्चय और समझ है कि हमारा समाज सुधरे, सात्विक हो, सुखदायी हो, तन का कोई रोग न हो, मन में कोई अशांति न हो, धन में भ्रष्टाचार न हो, पापाचार न हो, समाज में ऐसा सुधार हो जो आपस में प्रेम भावना से रहे, प्रकृति ऐसी सुंदर हो जो सुखदायी रहे, स्वधर्म में ऐसा टिके जो कोई किसी बात का डर नहीं हो, श्रेष्ठ कर्म कर सके। तो तन से सुखी, मन से सुखी, धन से सुखी, संबंध से सुखी, समाज से सुखी, प्रकृति से भी सुखी, वो कब बनेगी? जब आत्मा के अंदर वो दिव्य संस्कार जागृत हो, आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने के और रियलाइजेशन कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूं, मैं सुखदाता की संतान हूं, परमपिता परमात्मा शिव कल्याणकारी हैं, वो सदा सत्य हैं, तो सत्यम शिवम सुंदरम की मैं आत्मा संतान मन को बड़ा शुद्ध बनाऊं, तीनों चीजों को कंबाइंड पावरफुल बनाऊं, संकल्प को पावरफुल, बुद्धि को क्लियर क्लीन दृढ़ता, संकल्प में निश्चय बुद्धि और संस्कार में वो प्रतिज्ञा श्रेष्ठ कर्म की। हम सब ने मिलकर के प्रतिज्ञा की, एक दो को साक्षी बनाया, तो मैं उस कर्म को श्रेष्ठ कर्म करके दिखाऊं। सिर्फ मैंने हाथ खड़ा करके, हाथ आगे करके नहीं किया, पर हृदय को, मन की भावना को सहयोग देने के लिए सबने हाथ आगे किया, मैंने भी हाथ आगे कर दिया, पर मेरी दिल ने किया, मेरे मन के मंदिर में मैंने झांक के देखा कि मैंने कचरा निकाल देना है, मेरा मन डस्टबिन नहीं है, मेरा मन मंदिर है, और मुझे इस देहभान से निकल करके मन के अंदर जाना है। जैसे मंदिर में जाते हैं तो चप्पल जूता उतार के जाते हैं, तो मन के मंदिर में अंदर झांक के देखें, मेरे मन में शांति है, मेरे मन में प्रेम है, मेरे मन में पवित्रता है, मेरे मन में शुभ भावना है। वो जब तक मैंने ये चमड़ा नहीं उतारा, यानी देह का भान नहीं छोड़ा, तब तक मेरा मन वो शुद्ध नहीं हो सकता, और दूसरे के मन के प्रति शुभ भावना होते हुए भी कर्म में नहीं आएगी। इसलिए मन को मंदिर बनाए और इन कर्म इंद्रियों को आश्रम बनाए, ताकि मेरा वातावरण समाज में रहते मेरा स्वभाव ठीक हो, और वो तब होगा जब मेरा संबंध एक परमपिता परमात्मा शिव से है। परमपिता तो सबका है, परंतु परमात्मा शिक्षक है, इसलिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो इस विद्यालय में जब आई मैं, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, तो मुझे सच्ची समाज सेवा की भावना जागृत हुई, और मैंने निश्चय किया, मैं बीए फाइनल कर रही थी उस समय, निश्चय किया कि मुझे यही सेवा करनी है, मुझे समाज सेवा करनी है, और हर एक आत्मा समाज में, ये सारा संसार ऐसे ही बगीचा है, उसमें बेशक कोई गुलाब है और गुलाब के साथ कांटा भी है, परंतु अगर मुझे गुलाब को फूल को कांट पानी देना है तो कांटे को छोड़ना नहीं है, गुलाब के साथ कांटा है मुझे स्वीकार करना है, परंतु ऐसा गुलाब, ऐसा अपना जीवन बनाए जो कांटे को भी मैं फूल बनाऊं। और वो तब बन सकता है, कमियां कमजोरियां, कांटे मतलब दुख देने वाली चीजें, वो तब दूर हो सकती हैं जब मेरा संबंध पिता परमात्मा से हो। तो जैसे ज्योत जगी, ज्योत जगते ही आपने देखा तीन चीज प्रकट हो गई, लाइट, उस पर उंगली रखो तो आग, और तीसरी बात उसकी लौ, दीवा बुझा तीनों बुझ गए, दीवा जगा तीनों जाग गए। तो मैं आत्मा अगर मन बुद्धि और संस्कार तीनों को जागृत करती हूँ तो ये समाज सुंदर समाज बनेगा, यही संसार स्वर्ग बन जाएगा, हर एक का मन मंदिर बन जाएगा, मंदिर मन के अंदर दृढ़ता आएगी, हमारा समय स्पष्ट सफल होगा, हमारा श्वास सफल होगा, हमारा संकल्प सफलता को ले आएगा। तो ऐसा समाज को श्रेष्ठ बनाने के लिए ज्ञान का सागर परमात्मा शिव है, वो शिक्षक बनकर सतगुरु बनकर सत्य शिक्षा देते हैं और सत्यता से ऑनेस्टी से जीवन में अपनाते हैं तो जीवन परिवर्तन होता है। ऑनेस्टी से कोई काम करते हैं वो क्वालिटी बनती है, सेल्फिश मोटिव से करते हैं उसमें क्वालिटी नहीं होती, स्वार्थ से करते हैं वो प्रोडक्शन क्वालिटी वाला नहीं होता है। तो इसलिए सच्चाई और सफाई, तो समाज को स्वच्छ बनाना है, समाज को हेल्दी बनाना है, स्वयं को भी हेल्दी बनाना है, तो आध्यात्मिक शक्ति हमारा जीवन का भोजन है, आध्यात्मिक शक्ति हमारी लाइफ है, आध्यात्मिक शक्ति हमारे जीवन का श्वास है, आध्यात्मिक शक्ति वरदान है, परमात्मा का वर्षा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी पिता परमात्मा से ये वरासत भी लेके जाएंगे और शिक्षा को भी जीवन में धारण करेंगे और साथ साथ वरदान भी लेकर के जाएंगे, क्योंकि आप वरदाता के घर में आए हैं। तो सदा सुखी भव, सदा शांत भव, सदा पवित्र जीवन, श्रेष्ठ जीवन जी के सबको सुख दे, ना दुख ले ना दुख दे, ये मंत्र अगर पक्का हो गया तो समाज को सुखी बना सकेंगे। ओम शांति, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी का, इतनी उम्र होने के बावजूद भी इतनी सेवाएं करते, जो परमात्मा से शक्ति ले अथक रूप से दीदी जी सेवाएं करते हैं। अब हम सबके बीच थोड़ा हमारा मनोरंजन करने आ रही है अमरावती का ग्रुप, कुमारी श्रेया, कुमारी नारायणी, कुमारी दिया, कुमारी साक्षी एक डांस प्रस्तुत करेगी। अब सभी भाई बहनों से निवेदन है कि थोड़ा ही प्रोग्राम है, कोई भी उठे नहीं, हमारे मुख्य अतिथि जो है उनका भी हमें उद्बोधन सुनना है।
बने लहर और लहर, लहर
बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भ्राता तीरथ सिंह रावत जी के द्वारा इन कन्याओं का स्वागत कर रहे हैं, गुलदस्ता दे रहे। आप सभी एक बार फिर से इनके लिए ताली बजाइए। धन्यवाद आप सबका। अब मैं निवेदन करती हूँ कि जिनकी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ स्नेह के रिश्ते हैं, जब भी निमंत्रण देते हैं आप चले आते हैं और ऐसे ही उत्तराखंड की सेवाओं को बढ़ाते हुए आपका सहयोग मिला और आप सदा आध्यात्म के साथ जुड़े रहते हैं। आपका नाम ही काम करता है और भूमि तो देव भूमि कहलाती है। ऐसे तीरथ सिंह रावत जी जो पूर्व सांसद सदस्य भी रहे, पूर्व मुख्यमंत्री भी उत्तराखंड के रहे, गढ़वाल निर्वाचन क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के आप अध्यक्ष भी रहे हैं, तो मैं ये कहूंगी कि जहां सूर्य की किरण हो वही प्रकाश होता है, जहां भगवान के दर्शन हो वहीं से भवपार हो जाता है, और जहां गीता ज्ञान की वाणी हो वहीं से उद्धार होता है, और जहां प्रेम की भाषा हो वहां ही तो प्रेम की गंगा बहती है। ऐसे जोत से जोत जगाते, सर्व के स्नेह की पूर्ति करते, सर्व के कार्य करते हम सब के बीच तीरथ सिंह रावत जी है। हम उनसे सुनेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे पूजनीय दीदी जी जो बहुत समय से हम सभी के बीच बैठे हुए स्नेह की शक्ति के, परमात्म शक्ति के वाइब्रेशन दे रहे थे, और अब उन्होंने अपने आचार वचन हम सभी को सुनाए, अपना सेवाओं का अनुभव भी सुनाया। अब मैं दीदी जी को हम सभी की तरफ से विदाई नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि दीदी जी आप थोड़ा रेस्ट कीजिए, उम्र का ध्यान रखते हुए। मैं दीदी जी एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे मेहमानों को गिफ्ट दे करके जाएंगे। मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ कि दीदी जी के कर कमलों से उनको गिफ्ट मिले और उनका सम्मान हो। इतनी बड़ी उम्र है, हम सदैव दीदी जी से सीखते हैं कोई भी काम के लिए। बच्चे की तरह, एक युद्ध की तरह दीदी सेवा में ईश्वरीय शक्ति के साथ सदैव रहते हैं। हांची का पाठ पक्का है। आप सभी से अनुरोध है कि आप भी ताली के साथ सहयोग दीजिए, बचपन के दिन याद कीजिए। हम स्कूल में थे तो कैसे ताली बजाते थे, बड़े भाग्यवान होते हैं वो आत्माएं जिन्हें महान आत्माओं के द्वारा कुछ शक्ति प्राप्त होती है। कीर्ति बहन को भी दीदी जी ईश्वरीय सौगात भेंट कर रहे हैं, और समाज सेवा प्रभाग का मोमेंट भी हमारे भ्राता श्री तीरथ सिंह रावत जी को भी मिला है और कीर्ति बहन को भी मिला है। अब मेरा नम्र अनुरोध है भ्राता तीरथ सिंह रावत जी हम सभी के आगे अपने विचार और अनुभव सुनाएंगे।
सबको मेरा प्रणाम। आज राष्ट्रीय समाज सेवी सम्मेलन ब्रह्म कुमारी संस्था के द्वारा जिनका उद्बोधन सुविचार हमने सुना, ऐसे अपनी राजयोगी दीदी सुदेश जी हमारे संतोष दीदी यहाँ से निकल गई। कीर्ति चिंतन जी, प्रेम भाई जी, आपके तो मैं आश्रम गुलमर्ग आया था कर्नाटक में जब चुनाव में था, बच्चों का एक भव्य कार्यक्रम वहां पे था। आशा बहन जी, अवतार भाई जी, सीता बहन जी, वीरेंद्र भाई जी और जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, बातचीत होती रही लगातार लगातार। और श्रीनगर में जब कार्यक्रम था तो तब भी मैं उस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ था, मुझे सौभाग्य मिला था। ऐसे माननीय मेहर चंद्र जी भाई, सम्मानित मंच, उपस्थित बहन और भाइयों, और मेरे साथ में डॉक्टर विपुल जी हैं, हरीश जी हैं, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन आभार प्रकट करता हूं और प्रणाम करता हूं। मैं भी आप ही की तरह एक कुछ सीखने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस कार्यक्रम में आया। मैं भले मैंने कहा कि मैं गुलमर्ग गया, श्रीनगर भी कार्यक्रम में रहा, लेकिन माउंट आबू मैं पहले भी आया हूं एक दो बार, राजनीतिक दृष्टि से आया हूं, लेकिन बाहर बाहर ब्रह्म कुमारी आश्रम को देखने की इच्छा हर समय रहती थी। मन करता था कि इसको, क्योंकि माउंट आबू यदि मैं कहूं तो यदि जाना जाता है हर स्टेट में तो ब्रह्म कुमारी के नाम पर माउंट आबू, और इसलिए मन में एक प्रबल इच्छा होती थी। लेकिन आज सौभाग्य मिला है कि मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आपकी तरह मुझे पूरा 3 दिन का मौका नहीं मिलेगा अलग अलग कार्यक्रमों में रहने का, इच्छा थी, लेकिन अपना आपका भी समाज का काम और राजनीति ऐसा कुछ रहता है तो कार्यक्रम लगे रहते हैं। लेकिन फिर भी कुछ मैंने जो सुना है, मैंने जो समझा है, मैंने जो जाना है, बहुत कुछ अपने को प्रेरणा मिली है। अभी दीदी जी ने कहा पूरा देश विदेश में घूमती हैं, और जिन्होंने इस संस्था का शुभारंभ किया तो आदरणीय मेहरचंद जी से मैंने सुबह बहुत कुछ जाना समझा, कैसे कैसे शुरुआत हुई, कैसे कैसे प्रकटीकरण इस प्रकार का, और इतने बड़े उद्यमी होते हुए भी सब कुछ छोड़ने के बाद देश और समाज के लिए लग गए, और वो सामने विभूतियां जो हैं उनको भी मैं हृदय से दंडवत प्रणाम करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। उन्होंने भी पूरा जीवन उसके बाद जो अपने को लगाया खपाया समाज के लिए, ऐसे ऐसे माताएं बहनें कम उम्र में ही समाज के लिए चल पड़ी, तो समाज सुधारक तो ठीक है, लेकिन पहले स्वयं तो ठीक हो जाए, ये मैंने सीखा। जो आपका जो असली जो मंतव्य जो वाक्य है, बहुत सारे काम करते हैं, एनजीओ संस्थाएं हैं, न जाने में बहुत जगह मिलता हूं। अभी 25 को एक संस्था में जाना है दिल्ली, अभी दुबई गया था, वहां भी गया, अभी पिछले दिन 25, फिर सितंबर 18 मुंबई जाऊंगा। ऐसी संस्थाएं रहती हैं, लेकिन इनमें उनमें बहुत भिन्नता है। उनको संस्था चलानी है, अवार्ड देने हैं, संस्था चलती रहे, यह अपने आप में मैंने कहा कि अलग हमारा जीवन स्वस्थ हो, मन स्वस्थ हो, शरीर ठीक हो, स्वस्थ हो, लेकिन कब हो, जब जीवन शैली ठीक हो, अपना व्यवहार, अपना कृतित्व, अपना काम, अपना खान पान, अपना रहन सहन, अपना संस्कार, अपनी संस्कृति, कल्चर, क्या हम उसको जीवित रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे हैं, उस ओर हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, कि आज भौतिकता की चकाचौंध में हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। इस ओर विचार करना तो यहां से सीखना, परमात्मा है, घंटी हिला दी, बत्ती जला दी, मंदिर जगह जगह खड़ा कर दिए, शाम को बत्ती जलाने वाला भी कोई नहीं, यह आखिर मन मन में ही भगवान है, आत्मा की भी आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा का ठीक से बोध हो और आत्मा का ही बोध नहीं है। इस माउंट आबू में ही ब्रह्म कुमारी की तरफ ये देखने की बात है, चक्षु मेरी किधर है, मैं क्या सोच रहा हूं, मन में क्या हो रहा है। माउंट आबू में यदि ब्रह्म कुमारी की तरफ हम चल पड़ रहे हैं, इस रास्ते को अपना रहे हैं, तो दूसरा दृश्य मिलता है, संस्कृति, संस्कार, कल्चर। लेकिन शाम को रात 7 बजे की ओर बाजार में जाओ तो नाच कुछ और ही दिखता है, भौतिकवाद जो मैंने कहा। अरे अपने चक्षु, अपने मन की बात है, आत्मा की बात है, हम किधर जाना चाहते हैं, आप ही के सामने दोनों चीजें हैं, दूर नहीं जाना, मैंने निकटता से देखा। माउंट आबू जाना तो इसलिए जाता है ब्रह्म कुमारी, लेकिन कुछ लोग इसलिए भी, राजस्थान का सबसे बड़ा पहाड़ का क्षेत्र टापू, चित्तौड़ भी अन्य भी है, लेकिन ये बड़ा स्थान, ठंडा इलाका, रोमांटिक, जैसे हमारे मशहूरी, नैनीताल, फलाना, अन्य पर्यटक केंद्र है, चले जाओ अंडमान निकोबार, गोवा, ये सारी चीजें, तो वो दृश्य भी देखना तो वो भी यहां दिखता है। सारा शाम को अहमदाबाद इधर आ जाता, मैंने ये भी सुना है, क्योंकि वहां तो मिलता नहीं। तो वहीं डैग बजेंगे, सब कुछ होगा वो, लेकिन उधर उसका यहां तक प्रभाव नहीं पड़ने वाला, न पड़ता है, क्योंकि हमने अपने आप को उस ओर ढाला है, हमने अपने मन को, अपने आत्मा को, अपने तन को इस ओर लगाया है, इसलिए हम पे वो कुछ असर नहीं पड़ेगा। जैसे दीदी ने कहा, गुलाब है तो फूल भी है, कांटे भी हैं, लेकिन ये अपने पे निर्भर करता है। इसलिए हम केवल केवल मात्र कार्यक्रमों में आ गए तो ये इतिश्री इतना नहीं, तो कुछ लेके जाएं, प्राप्त करके जाएं। मुझे भी मालूम था बड़ा कठिन है, जल्दी नहीं जाते, यानी ब्रह्म कुमारी उसमें जाना तो बड़ा कठिन है। हम भी उसी तरह होते, दूसरी तरह जो अखाड़ा चलता है शाम का, तो शायद हम यहां नहीं आते। इसलिए यह सुविचार। तो मित्रों, बहनों और भाइयों, आप जो लोग यहां पे आए हैं, आप सौभाग्यशाली हैं। आप समाज को तो देंगे, लेकिन समाज को देने से पहले अपने आप को ठीक रखना, स्वस्थ रखना, मन चित्त तन। अरे कोविड में खूब देख लिया, मैं तो कोविड के समय मुख्यमंत्री था, मैंने देखा, बड़े निकट से देखा था। रात नहीं, दिन नहीं, भूख नहीं, प्यास नहीं, पूरे दुनिया के अंदर क्या नजारा था। किसी के लिए टाइम नहीं होता था, रात और दिन लगे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आगे के लिए भी कुछ रख जाएं, यही था ना। इसलिए जिस परिवार के संस्कार थे, कुटुंब व्यवस्था थी, और हम कहते हैं भारत के लोग तो आध्यात्मिक लोग हैं, वसुधैव कुटुंबकम, हम विश्व की चिंता करने वाले वो भारत हम लोग हैं। हम केवल अपने चिंता नहीं, तो पूरे जनमानस की चिंता करना जो आप सिखलाते हैं, आत्मा परमात्मा जन शरीर जीवन, यहां तो वो उत्पत्ति हुई है कि हम केवल अपना नहीं तो दूसरे की भी चिंता करने वाला वसुधैव कुटुंबकम, यह हम हैं। लेकिन मैंने कहा कि जो उस और प्रवृत्ति के पूरा एक पीढ़ी दो पीढ़ी सात पीढ़ी रख जाओ, कोविड में बोल गए डोल गए, न रहा पैसा काम आया, न कोई धन आया, न एसी होटल आए, न एसी गाड़ियां, तब यही होता था, भगवान हे परमात्मा मुझे गरीब बना दे लेकिन बीमारी न लाए, मुझे बीमार मत कर देना, मुझे गरीब भले गरीब, तब चिंता हुई। कब हुई? जब देखा ना सामने मौत आई है, और मैंने देखा कि गरीब उस समय भला रहा, अच्छा रहा, लेबर गाड़ियां भर भर के, ट्रक भर भर के, चिपक करके जा रहे हैं, एक दूसरे का पसीना एक दूसरे पर लग रहा है, और हम कह रहे हैं बचो, माँ बाप से भी बचो, बेटे से भी बचो, कुछ हो गया देखा नहीं। अरे लेबर था वो, मिट्टी में खेलने वाला कूदने वाला, उसकी मेहनत काम आई, उसका पसीना काम आया, उसका स्वच्छ मन काम आया, पैसे वाला बोल गया, क्योंकि मैं कह रहा हूं मैं तो उस समय था, देखा मैंने बड़े निकट से देखा, चले गए। अब उसके बाद परिवर्तन है, कहना ये परिवर्तन, ये तो ध्यान में आया बाद में, जब अपने लिए भी कुछ सोचना है। स्वस्थ रहेंगे तो सब कुछ होगा, स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो फिर क्या कर लेंगे, रहते रहो, नोटबंदियां कर दी, उड़ गए मोदी जी ने, ले नदियों में बहते हुए होलियां जलते हुए देख लिया, क्या काम आया। लेकिन काम आया मेरा शरीर स्वस्थ, मन चित्त, ये इसलिए कहा कि आत्मा ही परमात्मा है, सब कुछ यहां। तो मित्रों बहनों भाइयों, इस अवसर पर ज्यादा न बोलते हुए, क्योंकि ज्ञान तो यहां से प्राप्त करना था, वो हमने प्राप्त किया, वो हमने आत्मसात किया है, उसको आत्मसात करते हुए हम भी आगे बढ़ेंगे, लेके जाएंगे, अपने को स्वस्थ रहेंगे, समाज को स्वस्थ करेंगे, यह भाव मैं कह सकता हूं कि अपने उस संस्कार का हम लोग आगे बढ़ें, इस ओर चलें। इतना ही कहते हुए आप सब लोगों का धन्यवाद, और हृदय से मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं। अपनी बातों को यहीं पे समाप्त करता हूं। क्योंकि मैंने कहा कि ऐसे समय पे ज्यादा अपने पास बोलने को नहीं है, वो और जगह होता है, यहाँ पे तो केवल आध्यात्म का। और जो मैंने कहा कि यहाँ पे प्रशिक्षण ये सारी चीजें क्या बहुत सी सारी चीजें मेडिसिन यहाँ पे जो सुना मैंने पूरी तरह से अलग अलग उसमें जो आपका चल रहा है तो उसका मैं भी पूरा वो लेता आनंद, लेकिन समय नहीं है। तो इसका आप सब लोग जो लोग लगे हैं अपने को पूरी तरह समाज में के लिए आप लोगों ने अपना समय दिया है, और मैं सोचता हूं कि उसी से आगे देश का भला होगा, समाज का भला होगा। दो चारी शुरुआत होता है लेकिन बाद में पूरी तरह आज किस रूप में एक व्यक्ति आए थे दादाजी, उसके बाद फिर ये बहनों ने जिन्होंने इस प्रकार का काम आगे चल करके फिर खड़ा किया, और फिर कुछ टीम अपनी जो इस समय वर्तमान में कर रही है, निश्चित है इसने एक अलग जगाने का काम किया है, वो अलग जगाई है, निश्चित हम और बढ़ेंगे, देश समाज आगे बढ़ेगा और आप सब के लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा। आप परिवर्तन लाए हैं, लाएंगे, इतना ही कहते हुए आप सबका धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।
बहुत बहुत दिल से धन्यवाद भ्राता तीरथ सिंह रावत जी को। पर एक बात मैं कहना चाहूंगी कि जीवन में व्यक्ति अंत तक एक स्टूडेंट होता है, अध्यात्म हो या दुनिया की बातें हो, सीखना तो है ही, सीखना आत्माओं से है और यहां तो सिखलाने वाला परमात्मा है। तो आत्मा ये जन्म मरण के चक्र में आने वाली है, परंतु भगवान जो है जिसको परमात्मा कहते हैं, गॉड कहते, ईश्वर कहते, अल्लाह कहते, वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। तो इसीलिए इस अंतर को रावत जी सुनिए, आत्मा और परमात्मा का जो अंतर है उस अंतर को समझने के लिए आपको जरूर समय देना होगा। हम आत्मा परमात्मा की संतान जरूर है, परंतु हम परमात्मा नहीं हो सकते, क्योंकि परमात्मा सर्व आत्माओं के मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, दुख हरता सुख करता है, सत्यम शिवम सुंदरम है। अब उसे जानना है, पहचानना है, उनके साथ रिलेशन जोड़ना है और उनसे आने वाले दैवी राज्य के लिए वो वर्षा भी हमें प्राप्त करना है जो हमारा भारत हम कहते हैं गीतों में सुनते हैं, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश पुनः हमें परमात्मा की शक्ति से लाना है। और वो लाने वाले और कोई नहीं है, वो हम ही है जो भगवान हमारे द्वारा ऐसी दैवी दुनिया की स्थापना का कार्य करा रहे हैं। इसीलिए जो मनुष्य नहीं कर सकता वो भगवान करते हैं, और उनमें अंतर यही है, आत्मा कर्म फल में आती है, जन्म मरण में आती है, सुख दुख में आती है, परंतु परमात्मा इन सब से न्यारे है। अब मैं निवेदन करती हूँ हमारे अवतार भाई जी से। कहते हैं जीवन में एक आशा एक विश्वास होता है, और वो आशा और विश्वास हम कहाँ रखें? तो हमारे अवतार भाई जी ने परमात्मा पर विश्वास रखा, स्वयं के लिए आशा रखी कि मैं ईश्वर का वो सेवक बनूंगा। इसीलिए कहा जाता, जीवन तुमको दिया है, अब आप ही उस जीवन को संभालने वाले हैं। इन्हीं अनुभव को साथ में लेते हुए समाज सेवा प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में आप कार्यरत है। आप संवाददाता राजस्थान पत्रिका के हैं, सिरोही जिला पत्रकार परिषद के आप अध्यक्ष भी है। मैं निवेदन करती हूँ कि हमें कुछ अनुभव या प्रेरणा दे और शुभकामनाएं दे अवतार भाई जी।
ओम शांति। अखिल ब्रह्मांड नियंता सर्वशक्तिमान परमपिता शिव परमात्मा की प्रिय संतान आदरणीय तीरथ सिंह जी रावत साहब, आदरणीय कीर्ति बहन जी, आदरणीय मेहरचंद भाई जी, आदरणीय राता प्रेम सिंह जी, आदरणीय आशा बहन जी, आदरणीय सीता बहन जी, आदरणीय वीरेंद्र भाई जी और इस मंच पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम दे रही, मंच संचालन का महत्वपूर्ण कार्य कर रही आदरणीय वंदना बहन जी और उपस्थित सभासद भाइयों और बहनों, ये बहुत ही हर्ष और गौरव की बात है कि समाज और सेवा जो सदियों से एक दूसरे के पूरक हैं और उसमें सेवक जुड़ जाता है तो पुनीत त्रिवेणी संगम उसमें का मणिकांचन योग बन जाता है। बहुत ही सुखद संयोग है ये कि ये समाज में, क्योंकि समाज में जब जब भी जिस प्रकार की भी सेवाओं की आवश्यकता हुई है तो उसके सेवकों ने उसी प्रकार की सेवाओं का आविष्कार किया है। एक समय था जब समाज पूर्ण रूप से मूल्यनिष्ठ था, उसमें सभी प्रकार की वैल्यूज, चाहे उसमें मानवीय गुण हो, नैतिकता हो या विभिन्न प्रकार के सभी प्रकार के उसमें गुणों का समावेश सन्निहित था। लेकिन समय की जैसे जैसे करवटें बदलती गई, उन मूल्यों में भी उसी अनुरूप, क्योंकि समाज की इकाई स्वयं मनुष्य है और गुणों को या उस समाज में जिस प्रकार के भी मूल्यों का समावेश स्थापित किया जाना है उसका मूल आधार ही मानवीय वैचारिक धरातल है। जिस तरह से मानवीय वैचारिक धरातल एक उच्च कोटि का के विचारों से परिपूर्ण था, उच्च विचारों से संपन्न था, तो उन्हीं विचारों के आधार पर एक समाज भी उच्चता के वो प्राकाष्ठा उस समाज में थी जिसको आज भी लोग दैवी संस्कृति के रूप में याद करते हैं। लेकिन जैसे जैसे मानवीय वैचारिक धरातल में कुत्सित भावनाओं ने जन्म लेना आरंभ किया तो उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि मनुष्य में नैतिकता के साथ साथ ही विभिन्न प्रकार की जो मूल्य हैं उसमें भी गिरावट आनी आरंभ हुई। यही वजह है कि उसका निरंतर जब जब भी उसकी गिरावट आई मानवीय वैचारिक धरातल पर, जो कुत्सित भावनाओं ने जन्म लिया और उसके चंगुल में वो आता गया तो निरंतर ही समाज में मूल्यों का वास होता ही चला गया। इसीलिए आज जो विषय हम लोगों के पास इस चर्चा के लिए यहां उपस्थित है तो नैतिक मूल्यों में या मानवीय मूल्यों में या सामाजिक मूल्यों में किस प्रकार से फिर से उत्थान, उस मूल्यों को किस प्रकार से मानवीय जीवन में अपनाने के लिए उसके धरातल को सशक्त बनाने की आवश्यकता है। और उस धरातल को सशक्त तभी बनाया जा सकता है जब उसका जीवन ईश्वरीय अनुकंपा, परमात्मा के शरणागत। हम लोग ये देखते हैं कि जिस प्रकार बिल्ली के जो बच्चे हैं वो पूर्ण रूप से अपनी मां पर वो शरणागत हैं, सरेंडर हैं। तो क्या है कि वो जब सरेंडर पूर्ण रूप से शरणागत अपनी मां पर हैं, तो उनकी रक्षा उसकी मां जो है, बिल्ली जो है, वो पूर्ण रूप से करती है अपनी जवाबदारियों का निर्वहन करते हुए। और दूसरा पहलू ये देखा जाता है कि सांप, सांप के बच्चे पैदा होते ही अपनी मां से ही उन्हें अपनी सुरक्षा का डर रहता है, तो वो संघर्ष करते हैं और उस संघर्ष में मां से ही वो मारे जाते हैं। तो उसी तरह से जब हम स्वयं भी स्वयं को ईश्वरीय शरणागत निश्चयात्मिका बुद्धि के द्वारा स्वयं को ईश्वरीय शरणागत कर लेंगे, तो परमात्मा अपने आप ही आपका रक्षक है। वो उस दायित्व का निर्वहन करने के लिए पहले से ही प्रतीक्षारत है, लेकिन आवश्यकता है निश्चयात्मिका बुद्धि के द्वारा परमात्मा की शरणागत को प्राप्त करना। और दूसरी ओर यदि जब तक हम उस कुत्सित मानवीय जो वैचारिक धरातल है, उस धरातल पर कुत्सित भावनाओं को हम स्थान देंगे, तो निश्चित समझ लीजिए भाइयों और बहनों कि संघर्ष हमारे जीवन का भी एक अभिन्न अंग बन जाएगा, और वो कुत्सित भावनाएं, कुत्सित विचार न केवल मानवीय निजी वैचारिक धरातल को दूषित करेंगे, बल्कि वो समाज को भी दूषित करने के लिए एक ऐसी भूमिका अदा करेंगे जिसके आधार पर समाज भी निरंतर डाउनफॉल की ओर अग्रसर होता रहेगा। इसलिए यहां पर हम सभी जो भाई बहने उपस्थित हुए हैं, तो यहां जो भी हमें जो विचार दिए जाते हैं, उन विचारों को हम अपने जीवन में अंगीकृत करते, उन्हें धारण करते हुए और स्वयं को ईश्वरीय शरणागत पूर्ण रूप से निश्चयात्मिका बुद्धि के माध्यम से अगर कर लें, तो हमारा कहते हैं ना बेड़ा पार हुआ ही पड़ा है, निश्चय है, ये विश्वास है, अटल विश्वास है। बैतरणी नदी की बात आती है शास्त्रों में, हम सब जानते हैं कि चार वेद, छह दर्शन, 18 पुराण, 20 स्मृतियां और 108 उपनिषद इन्हीं वैचारिक धरातलों पर बने हुए हैं, हमारे पुरातन ऋषि चिंतकों ने, मनीषियों ने जो बनाए हैं, क्योंकि तब आवश्यकता थी उस समाज सेवा की, और उन्होंने इन आवश्यकताओं के अनुसार शास्त्रों का निर्माण किया। फिर जैसे जैसे अभी हमारे आदरणीय राउत साहब ने कहा कि स्वास्थ्य भी अपने आप में एक बहुत ही अहम पहलू है, तो उस समय में स्वास्थ्य की भी, मानवीय स्वास्थ्य को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए आयुर्वेद, एक चार वेद में से एक पांचवा वेद जो है वह आयुर्वेद का भी एक ये निर्माण हुआ, और आयुर्वेद के आधार पर स्वास्थ्य की, जीवन को स्वस्थ रखने के लिए एक नया आयाम समाज को दिया गया। तो इसी तरह से नए नए आयाम जब जब सेवाओं की जिस रूप में आवश्यकता हुई समाज को, लंबी लिस्ट हो जाएगी, दास्तान बड़ी है, समय अपनी सीमाओं को मतलब पार करता जा रहा है, लेकिन हाँ, उसके लिए हम यहां पर ये वर्णन नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये समझ लीजिए आज हमें कहने का तात्पर्य ये है कि आज समाज को उस ये सेवा की जरूरत है जिसमें कि मूल्यों को फिर से पुनरुत्थान होकर के समाज को एक नई दिशा दी जा सके, और वो दैवी संस्कृति जो पुरातन थी, पूर्व में थी, उसका फिर से नवनिर्माण हो, उसके लिए यहां पर एक नई समाज सेवा की आवश्यकता है। और ये समाज सेवा हम सबको एक साथ मिलकर के जो परमपिता परमात्मा शिव परमात्मा के निर्देशन में जो स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा के साकार माध्यम के द्वारा ब्रह्मा कुमारी संगठन जो करता चला आ रहा है उसमें सहयोगी बन करके और उस समाज को एक नई दिशा देने के लिए हम यहाँ से संकल्पित होकर चले, यही मेरी शुभ भावनाएं हैं। और इसी यही इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ साथ ये जो यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इस कार्यक्रम को और अधिक सफल बनाने के लिए हम सब आप सभी के साथ कृत संकल्प हैं। और इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ एक बार पुनः आप सबका ओम शांति, धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद अवतार भाई जी। हम सबको पता है कि हमारा अभी भोजन का समय हो रहा है, कईयों का तो बहुत जल्दी भी होता है, लेकिन आज के दिन कोई बात नहीं, बस आप जाएंगे तो आपको थाली मिल ही जाएगी। इसलिए अब मैं कहती हूँ कि थोड़ा आत्मा का भोजन भी कर ले। बहुत समय से हम बहुत सारी ज्ञान की बातें तो सुन रहे, पर कुछ पल उस प्यारे पिता को याद करें। तो मैं निमंत्रण देती हूँ राजयोगिनी सीता बहन जी को कि जिन्होंने 50 वर्ष से इस राजयोगी जीवन को अपनाया और अनेक आत्माओं का जीवन बनाने आप प्रेरणा देती रही, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा आपको व्यसन मुक्ति पुरस्कार प्राप्त है क्योंकि विदर्भ के 5 जिले में आपने लगातार व्यसन मुक्ति का कार्यक्रम चलाया है, तो गवर्नमेंट की ओर से आपको पुरस्कार प्राप्त है। साथ ही साथ आपने अपने जीवन में ईश्वरीय ज्ञान का प्रचार प्रसार करते अमरावती जिले में 18 सेंटर खुले हैं और उसके साथ 125 गांव में, छोटे छोटे गांव में जाकर के भी यह आध्यात्मिक ज्ञान देकर अनेक लोगों का जीवन चरित्रवान बना रहे हैं। साथ ही साथ अनेक विशेषताएं आपके जीवन में है, लेकिन कल्चर के साथ कल्चर प्रोग्राम जो आप देख रहे हैं वो सीता दीदी जी की विशेष विशेषता है कि ज्ञान के गीत और संगीत उसके द्वारा बच्चों के अंदर भी आध्यात्मिकता लाए, तो उनके पास बच्चों के उन्नति के क्लास भी चलते हैं और उनका विकास कैसे करें वो भी करते हैं। तो मैं निवेदन करती हूँ कि वे हमें राजयोग मेडिटेशन अर्थात परमात्मा की याद में समाने के लिए हमें गाइड करेंगे, गाइड मेडिटेशन सीता दीदी। ओम शांति। समय की घड़ी आगे बढ़ रही है, तो मैं कुछ ही समय के साथ आप सबका उस निराकार परमात्मा शिव के साथ एक मंगल मिलन बनाना चाहूंगी, क्योंकि सर्वोच्च समाज सेवक एक निराकार परमपिता परमात्मा मंच पर उपस्थित परम श्रद्धेय परम आदरणीय परम वंदनीय मंच और सभा में उपस्थित मेरे सभी सर्वोच्च समाज सेवक भाई एवं बहने, बहुत ही सुंदर रूप से इस ज्ञान सरोवर के प्रांगण में कल से लेकर हम सब देख रहे जो समाज को एक समृद्ध समाज, सशक्त समाज बनाने की जो कुंजी है वो आध्यात्मिकता, लेकिन आप सभी देख रहे हो उसका जो बीज जिसको गीत के माध्यम से भी आपने सुना वो है आध्यात्मिकता, वृक्ष है सद्व्यवहार, फिर उसके साथ उसका जो है तना है वो है राजयोग, उसका जो हम कहते हैं फूल कहो तो वो है हमारे जीवन का उमंग और उत्साह, और फल कहे तो संसार के अंदर में एक सुख शांति में जीवन बनाने की एक कला। तो मैं यही कहूंगी आप सबको कि सर्वश्रेष्ठ समाज, उस श्रेष्ठ समाज का जो वास्तविक व्याख्या कहो या अर्थ कहो वो है सकारात्मकता के साथ इस संसार के अंदर में एक सुंदर शुद्ध विचारों का प्रकंपन, क्योंकि मनुष्यों के अंदर में जितने ही अच्छे विचार और यही अच्छे विचार उनके उन्नति का और उनके गिरावट का क्या बनता है एक साधन। अगर मनुष्य अपने जीवन में अच्छे विचारों के साथ अगर जुड़ जाता है तो वही जीवन एक उनको बहुमुखी उन्नति के शिखर पर भी ले जाता है। तो चलिए कुछ ही क्षणों के लिए हम सभी इस राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे, क्योंकि राजयोग एक जीवन जीने की कला है और ये कला जिसके भी हाथ में आती है तो उनका जीवन बांस का टुकड़ा नहीं, एक आनंद देने वाली बांसुरी बन सकती, एक आनंद देने वाली बांसुरी बन सकती। तो मैं आपको इस बाह्यमुखी जगत के साथ जो हम सभी जुड़े हुए थे, अभी कुछ क्षणों के लिए अपने पीठ की रीढ़ की हड्डी थोड़ा स्ट्रेट करें, अपनी अपनी जगह पर हम सभी जो भागते हुए मन के विचारों को यहाँ इसी हॉल में जो सामने आप सब देख रहे हो, हमारे परम पिता परमात्मा शिव जिनका एक सुंदर चित्र, जिनका माध्यम है प्रजापिता ब्रह्मा, और उनकी भ्रुकुटी के बीच जो एक सूक्ष्म शक्ति सूक्ष्म पावर से, क्योंकि इस विद्यालय में हमारा जो पदार्पण हुआ तो छोटे बाल्य अवस्था में 16 साल के आयु में ही उस परमात्मा के द्वारा उनकी भ्रुकुटी से निकली हुई दिव्य शक्तियों की किरणें। तो चलिए हम अपने आप को इस हलचल की तनाव की दुख और अशांति की दुनिया से बहुत ही दूर और इस राजयोग का प्रथम एक श्रेष्ठ विचार आप सब अपने मन को अपने आप को देखें, इस पंच तत्व के शरीर में उस आत्मा का इस भ्रुकुटी के बीच में एक स्थान है जो स्वयं में एक प्रकाशित है और ऐसी प्रकाश में दिव्य ज्योति जो इस शरीर को चलाती है और उसी में ही इस मेडिटेशन से दिव्य गुण दिव्य शक्तियां और श्रेष्ठ कार्य को करते दिव्य गुणों से उसको हम सुशोभित करेंगे। उसका आधार ही है सबसे पहले इस पंच तत्व के शरीर से हम बहुत ही दूर जहां एक सुंदर सुनहरी दुनिया है जो हम सभी आत्मा का मूल निवास स्थान भी है, जहां शांति ही शांति है, प्रकाश ही प्रकाश। तो हम सभी उस शांति के देश उस शांति के स्वधर्म के साथ अपने आप में यह अनुभव करें कि मैं परम सत्ता परम ज्योति पॉइंट ऑफ लाइट उस सुप्रीम लाइट निराकार ज्योति के साथ अपना कॉन्टैक्ट और उसी ही सुप्रीम शक्ति से अपार शक्तियों का पुंज परमात्म दिव्य शक्तियां मैं आत्मा अपने आप के अंदर अनुभव करती जा रही हूं। मेरी चारों ओर असीम शांति शक्ति आनंद प्रेम और सुख उससे मैं आत्मा अपने आप को भरपूर कर उस परमात्मा का एक शुक्रिया जिसने मुझे यह इस समय इन शक्तियों से इस वरदानों से सुसंपन्न कर रहा है
और ऐसी शक्ति को प्राप्त करने के समय के महत्व को जान हम रोज उस परमपिता परमात्मा शिव का शुक्रिया करते हुए और उनको अपने परमपिता परम शिक्षक और परम सद्गुरु के रूप में अपना साथी बनाते हुए उसके साथ की शक्तियों का असंभव को भी संभव कार्य करने की एक शक्ति उस परमात्म दिव्य शक्तियों से हम प्राप्त करते रहे और इसी प्राप्ति से सबसे पहले हम अपने आप में एक समृद्ध अर्थात सशक्त शक्तिशाली और समाज को भी एक समृद्ध सशक्त शक्तिशाली बनाने के लिए एक निमित्त बनकर एक सुंदर सकारात्मक विचारों का चारों तरफ एक वायुमंडल एक वाइब्रेशंस फैलाएंगे ताकि यह संसार एक सुंदर संसार सुखमय संसार स्वर्णिम संसार अभी आया कि आया। तो परमात्म शक्तियां आप अपने आप के अंदर सदा धारण करते रहे और इसी के साथ में एक छोटे से प्रयोग कि आप सभी अपने श्वास को पहले अंदर ले और तीन बार ओम के महामंत्र से ऐसे हम समृद्ध सशक्त समाज की जो आध्यात्मिक कुंजी जो कुंजी है वह आध्यात्मिकता वह शक्ति इस राज्योग मेडिटेशन से अपने साथ लेकर जाए। शुरू करेंगे
बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रोग्राम के लास्ट अंतिम कड़ी जिसका भार सौंपती हूँ वीरेंद्र भाई जी को। आप 27 वर्ष से इस मधुबन महायज्ञ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप नेपाल से हैं, इनरवा शहर से, और समर्पित रूप से सेवाएं देते वर्तमान समय आप मुख्यालय कोऑर्डिनेटर समाज सेवा प्रभाग है। समाज कल्याण के उमंग जिनके मन में सदा रहती, लोक कल्याण की धारा जिनके दिल में सदा रहती, इसीलिए आत्माओं की दिल की दुआएं सदा आपको मिलती रहती। ऐसे वीरेंद्र भाई इस कार्यक्रम का आभार व्यक्त करेंगे। वीरेंद्र भाई।
ओम शांति। विश्व कल्याणकारी सर्वग सदगति दाता परमपिता परमात्मा उनके आधार पिता श्री ब्रह्मा को इस सभा में अनुभव करते हुए आज इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि श्री तीरथ सिंह रावत जी जो अपने अमूल्य समय निकाल करके हमारे इस समाज सेवा प्रभाग के प्रोग्राम में आकर के हम सभी को लाभान्वित किया और समाज में किस चीज की आवश्यकता है उसके बारे में जानकारी दी। आदरणीय रावत सर जी को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य हमारे आदरणीय संतोष दीदी जी जो कि समाज सेवा प्रभाग के अध्यक्षा है, ब्रह्मा कुमारी संस्था का ज्वाइंट चीफ है, महाराज जोन का इंचार्ज, इतना बिजी होते हुए भी हमारे सम्मुख आकर के आशीर्वचन दिए और समाज में कैसे हम सब मिलकर समाज को फिर से एक स्वर्णिम समाज बना सकते हैं। हम आदरणीय संतोष दीदी जी को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। आदरणीय सुदेव दीदी जी जो कि इस कैंपस के डायरेक्टर है, ब्रह्मा कुमारी संस्था के ज्वाइंट चीफ है, और हम सभी को इतने 85 वर्ष उम्र होते हुए भी आज देखेंगे एक युवा के तरह अपने जीवन को विश्व कल्याण में लगा करके और इस समाज सेवा प्रभाग में आकर के अपना समय अमूल्य दे करके हम सभी को लाभान्वित किया है और हम सभी को एक प्रेरणा देकर गए हैं। आदरणीय सुदेव दीदी को भी हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। आदरणीय प्रेम भाई जी जो कि समाज सेवा प्रभाग के उपाध्यक्ष है और गुलबर्गा सब जोन का डायरेक्टर है और उनके उम्र में 75 साल होते हुए भी हम सभी को इतना समय देकर के आज के प्रोग्राम करके इस कॉन्फ्रेंस का लक्ष्य का उद्देश्य बता करके हम सभी को उद्देश्य को लाभान्वित किया। आदरणीय भाई साहब को भी हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। साथ में हमारे आशा दीदी जी जो दिल्ली जो उनके कोऑर्डिनेटर हैं, आज के मुख्य विषय को हम प्रभावित करके समाज में हम कैसे कौन सा समाज सेवा करने से हम एक सच्चे समाज से भी बन सकते हैं, उस उद्देश्य को हमें स्पष्ट रूप से व्याख्या किया। आदरणीय आशा दीदी जी को हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। आदरणीय ब्रह्मा कुमार अवतार भाई जी जो इस समाज सेवा प्रभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर है और हम ही सभी को एक प्रेरणा दे करके उमंग उत्साह दे करके सेवा के लिए प्रेरित करते हैं। आदरणीय भाई साहब को भी हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। साथ में आदरणीय मेहरचंद भाई जी जो उत्तराखंड के डायरेक्टर हैं और स्पोर्ट बैंक के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और हमारे रावत सर जी को लाने के लिए निमित्त बने, आदरणीय भाई साहब ने हम सभी को स्वागत किया, सभी को उमंग उत्साह दिलाया। आदरणीय भाई साहब को हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। आदरणीय कीर्ति दीदी जी जो अमरावती से पधार रहे हैं और जेल सुप्रिंटेंडेंट है और अपने जीवन से हम सभी को प्रेरणा दिया, आदरणीय कीर्ति दीदी जी को हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। आदरणीय सीता देवी जी जो महाराज जोन के जोनल कोऑर्डिनेटर समाज सेवा प्रभाग के और इस जो आप ये कल्चर ग्रुप देख रहे हैं, दीदी जी कभी भी सेवा के लिए मना नहीं करते हैं, दीदी जी कल्चर ग्रुप ला करके हम सभी समाज सेवी को एक मनोरंजन कर दिया, स्वागत नित्य करवाया और शाम को आज शाम को 8:30 से 10 बजे भी कल्चर प्रोग्राम है इस समाज सेवा के प्रभाग के उद्देश्य को बीच में आए हैं। हम सभी को एक नित्य नाटिका द्वारा हम सभी को लाभान्वित करेंगे। आदरणीय दीदी जी को और सभी कल्चरल ग्रुप को हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। साथ में आदरणीय वंदना दीदी जी जो कि समाज सेवा प्रभाग के एडिशनल नेशनल कोऑर्डिनेटर है और जैसे दीदी का नाम वंदनी है, जैसे नाम है उसी प्रकार से हमारे उनके जीवन से झलकता है और इस मन आदर कुशल मन संचालन कर करके हम सभी को एक उमंग सा बढ़ाया। आदरणीय दीदी जी को हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। साथ में इस प्रोग्राम में सभी समाज सेवा को जो टीचर बहने जोनल कोऑर्डिनेटर है और सभी ने अपने अपने ग्रुप ला करके आज नेपाल और भारत से विशेष 500 गेस्ट आए हैं जो कि सभी समाज सेवी अपने जीवन को, जैसे कि डॉक्टर को बोला जाता है कि नेक्स्ट हमारे दर्द को कम करता है तो हम भगवान मानते हैं, उसी प्रकार समाज सेवी के अंदर में एक दया भाव होता है जो कि दया करना भाव होता है कि समाज में कुरीति मिटाने के लिए, कुरीति को हटाने के लिए, एक श्रेष्ठ समाज बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसे समाज सेवी दयावान को जो इस परिसर में आए, जो कि इस परिसर का नाम ही ज्ञान सरोवर अर्थात ज्ञान मान सरोवर में डुबकी लगाएंगे तो हम परी बन के निकलते, ये ज्ञान मान सरोवर है। यहाँ हम आकर के अगर परमात्मा के ज्ञान मंथन चिंतन करके उस जीवन को अपने अपनाते हैं तो अवश्य हम परमात्मा का परजाते सहजाते बन सकते हैं, अर्थात नई दुनिया का जो हम आने वाला दुनिया है उस दुनिया में हम नर ऐसी करने करे नारायण कहलाए, नारी ऐसी करने करे जो लक्ष्मी कहलाए। जो हम जानते हैं कि भारत एक नेपाल देश ऐसा देश है जहाँ देवी संस्कृति भरा पड़ा है। हम देखते हैं कि आप देखेंगे सिक्किम, दार्जिलिंग, नेपाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसको देव भूमि माना जाता है। और इस भूमि में रहने वाले व्यक्ति नेचुरल एक जो दया भाव होता है और सच्चे दिल के होते हैं, लेकिन भारत में परमात्मा आया हुआ है, परमात्मा आकर के फिर से इस नई दुनिया को बनाने के लिए, जो पुरानी दुनिया को नई बनाने के लिए अर्थात पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए जो कार्य चल रहा है 87-88 वर्ष से चल रहा है, लेकिन 1985 में परमात्मा हमारे बड़ी दादियों ने जो समाज, इस समाज में विभिन्न वर्ग है कैसे परमात्मा का संदेश या परमात्मा का जो हम बच्चों का अधिकार है लेने के लिए 20 प्रभाग बनाया गया है, उस प्रभाग के माध्यम से आज आप सभी यहाँ पहुंचे, जो समाज प्रभाग पहुंचे हैं आप सभी को जो परमात्मा घर में आप आए हैं, परमात्मा का निमंत्रण से आप आए हैं कि कोई व्यक्ति के निमंत्रण नहीं आए हैं। आप देखेंगे लास्ट तक जो रजिस्ट्रेशन हुआ उसमें नाम चेंज होता रहा, किसी का नाम दूसरा आया, लेकिन जो जिसका लक होता है वही लक्की कहलाता है। आप सभी यहाँ परमात्मा घर में आए हैं, परमात्मा का निमंत्रण से आप आए हैं, आप बहुत सारे लक्की हैं। परमात्मा बोलते आप पद्म सौभाग्यशाली आत्मा है, आपको लॉटरी लगा है, लेकिन लॉटरी लगने के बाद उसको यूज नहीं करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। तो परमात्मा आपको लक तो दिया है, वो लक को परमात्मा को जानेंगे। हम 3 दिन यहाँ शिविर करेंगे, सुबह का प्रत्येक हम सेशन अटेंड करेंगे और उसको जीवन में धारण करेंगे, अवश्य जो है हम सृष्टि को परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए इस संस्था का नारा ही यही है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, हम बदलेंगे तो जगत बदलेगा। आज इस संस्था देखेंगे प्रजापिता ब्रह्मा के दर में शिव बाबा प्रवेश किया, आज इस संस्था में 11 लाख भाई बहने अपने घर गृहस्थ में रह करके अपने जीवन को कमल पुष्प पवित्र बना करके हाँ एक संसार का उदाहरण बना है, और 50,000 भाई बहने समर्पित रूप से सेवा दे रहे हैं, विश्व परिवर्तन कार्य चल रहा है। अवश्य सृष्टि परिवर्तन होगा, अभी 1:30 बज रहा है, शाम भी होगा सवेरा भी होगा, इसी प्रकार सृष्टि परिवर्तनशील है, समय परिवर्तनशील है। सत्युग था, त्रेतायुग था, द्वापर आया, कलयुग आया, फिर सत्युग आएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उसमें वही जाएगा जो परमात्मा का आदेश को पालन करेगा, परमात्मा का श्रीमंत को अपने शिरोधार करेगा, वही बोलता कहा जाता जो ओटे सो अर्जुन, है ना। परमात्मा का ज्ञान अगर जीवन में जीवन धारण करते हैं अवश्य हम फिर उसी सुखमय दुनिया में जाएंगे जहाँ आप गायन सुनते हैं, सारा पूरा भारत जो है कि पूरा विश्व एक जो है स्वर्णिम संसार बनने वाला है। धन्यवाद, ओम शांति।
वीरेंद्र भाई जी का भी धन्यवाद। अब हम सभी इतने सुंदर कार्यक्रम को सफल बनाने की शक्ति प्रदान करने वाले परम पिता परमात्मा शिव जी का शुक्रिया अदा करते साइलेंस में 1 मिनट के लिए।